जब हम अवतारवाद की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान उस सिद्धांत विशेष की ओर जाता है जिसका प्रवर्तन भागवत धर्म के साथ हुआ। अवतारवाद भागवत धर्म की ही देन है। भागवत धर्म का प्राचीन रूप पांच राष्ट्र तंत्र है जिसे चित्र शिखंडी ऋषियों ने प्रचारित किया था। भागवत धर्म के परवर्ती रूप के प्रतिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है। यद्यपि कतिपय पांच रात्र संहिताओं में यह श्रेय संकर्षण को भी दिया गया है जो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का एक नाम है। भागवत धर्म को सातवत विधि की उपासना या आचार भी कहा जाता है। सातवत वंश यादवों की ही एक शाखा है और सातवत विधि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट विधि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। चतुर्व्यूहों में संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध नाम भी श्री कृष्ण के संबंधियों बंधु बांधवों पुत्र पौत्रादि के हैं। अतः विद्वान भगवान श्री कृष्ण को ही भागवत धर्म का अभिनव प्रतिष्ठाता मानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जितने निरावरण शब्दों में अवतारवाद का प्रतिपादन किया है उतना अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। पुराणों में जहाँ जहाँ अवतारवाद का उल्लेख है वहाँ गीता के शब्दों को ही दोहरा दिया गया है। गीता 7:4-5 अष्टधा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार और जीव को भगवान की ही विविध प्रकृति कहती है। अध्याय 4 के श्लोक 6 के अनुसार इसी प्रकृति का अधिष्ठान लेकर भगवान अज अव्ययात्मा तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी माया द्वारा उत्पन्न होते हैं। उनके इस संभव उत्पत्ति या अवतार का कारण धर्म की ग्लानि तथा अधर्म का अभ्युत्थान होता है। भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना साधुओं का परित्राण एवं दुष्कृतियों का विनाश करते हैं। उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, साधारण मानवों के स्तर के नहीं। भागवतों का यह सिद्धांत विशेष ही अवतारवाद के मूल में है। जैसे व्यक्ति और उस व्यक्ति की प्रकृति दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, इसी प्रकार प्रभु से जीव तथा जड़ जगत के आदि कारण को पृथक नहीं किया जा सकता। जब पृथ्वी तथा प्राणी परमात्मा के ही रूप हैं या उन्हीं की प्रकृति है तो उन्हें ईश्वर मानने में किसको आपत्ति हो सकती है। इसी आधार पर प्रकृति की मूल विकृतियों बुद्धि अहंकार तथा मन को तथा जीव को चतुर्व्यूह के नाम से परिगणित किया गया है। यह जीवित प्रकृति प्रभु की शक्ति है जो चंद्र की ज्योत्सना के समान उससे अपृथक स्थित है। विश्व इसी शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस रूप में समग्र विश्व को ही प्रभु का अवतार माना जा सकता है, पर अवतार वस्तुतः दिव्य जन्म एवं कर्म से संबंध रखता है। अतः विश्व की प्रत्येक सत्ता अवतार नहीं मानी जाती। गीता के अनुसार यद्यद्विभूतिमत्सत्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। जिस तत्व में विभूति श्री तथा ऊर्जा दिखाई दे उसी को भगवान के तेजस अंश से उत्पन्न अर्थात अवतार मानना चाहिए। भागवतों की मान्यता के अनुसार भगवान षट गुणों के हैं। इन छह गुणों में से संकर्षण में ज्ञान और बल, प्रद्युम्न में ऐश्वर्य और वीर्य और अनिरुद्ध में शक्ति और तेज की प्रधानता है। इनमें दो दो गुण है, अतएव उन्हें भगवान का आध्यात्मिक रूप और पवित्र अवतार भी कहा जाता है। भगवान के दो अवतार और होते हैं, आवेशावतार तथा साक्षात अवतार। आवेशावतार के दो प्रकार हैं, स्वरूपावेश जैसे परशुराम रामचंद्र आदि, शक्त्यावेश जैसे ब्रह्मा शिव आदि। आवेशावतार श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे अप्राकृत तथा दिव्य होते हैं। मोक्ष के अभिलाषी अर्थात साक्षात दिव्य अवतारों की उपासना करते हैं। भागवतों का यह सिद्धांत चतुर्व्यूहों के उपव्यूहों पर भी लागू होता है। एक एक व्यूह के तीन तीन उपव्यूह हैं। यह 12 उपव्यूह 12 राशियों में संक्रांत सूर्य के प्रत्येक रूप के प्रतिनिधि तथा 12 महीनों के अधिष्ठात्र देव समझे जाते हैं। पांचरात्र साहित्य के अंतर्गत अहिर बुधन्य संहिता के विषय विवरण में इनका उल्लेख हम कर चुके हैं। वही 39 विभव अवतारों का भी वर्णन दिया हुआ है जो संतों के परित्राता, फलों के विनाशक, धर्म के स्थापक तथा भगवत भक्त होते हैं। भागवतों ने भगवान के 5 रूप माने हैं, पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये भी इसी उपर्युक्त सिद्धांत से संबद्ध है। इन अवतारों में प्रकृति तथा प्राणी जगत दोनों के उदार स्वरूप सम्मिलित हैं। जो संप्रदाय भागवतों के सिद्धांत से सहमत नहीं है उन्होंने अवतारवाद में आस्था प्रकट नहीं की है, पर भागवतों के अवतारवाद की मोहिनी ने आकर्षित सभी को किया है। बौद्धों ने महात्मा बुद्ध के अनेक अवतारों का वर्णन किया है। गोरख संप्रदाय वाले गोरख को कबीर पंथी कबीर को सिख गुरु नानक को तथा अन्य मतवादी अपने अपने संप्रदाय प्रवर्तकों तथा संस्थापकों को अवतार कहते हैं। भागवतों ने भी इस महापुरुष में से कुछ को अपनी अवतार श्रृंखला में सम्मिलित कर लिया है। श्रीमद् भागवत महात्मा बुद्ध तथा जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को अवतार मानती है। भागवतों ने अवतारों की मान्यता में कुछ भेदभावना अवश्य रखी है। श्री कृष्ण जैसा लिखा जा चुका है भागवत धर्म के अभिनव रूप के प्रतिष्ठाता है, अतः उनके परिवार वालों को गुण युग्म की प्रधानता के कारण पवित्र अवतार माना गया है। दशरथी राम को आवेशावतार श्रेणी में रखा गया है, साक्षात अवतारों में उन्हें परिगणित नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है? विभूति में, श्री में, ऊर्जा में अथवा षट गुणों की स्थिति में वे किससे कम है? राम के चरित्र संपत्ति शील गुण आदि का जो प्रभाव भारतीय जनता पर है वैसा कदाचित अन्य किसी के भी व्यक्तित्व का नहीं है। फिर राम को साक्षात भगवान का पद क्यों नहीं दिया जा सकता? भागवतों की अवतार मान्यता जीव और प्रकृति के उदात्त अंशों को देव नहीं पूज्य ईश्वर भाव तक पहुंचाना पाणिनि युग के आते आते भारतवर्ष में फैल चुकी थी। ऋतुओं को देवता मानना, स्वर्ण रजत ताम्र आदि धातुओं से निर्मित प्रतिमा ही नहीं मिट्टी की बनी मूर्तियों तक में ईश्वर तत्व की प्रतिष्ठा करना, इंद्र कुबेर शिव स्कंद संकर्षण आदि के लिए मंदिर बनाना, देव प्रसाद से पुत्रोत्पत्ति को संभव मानना और पुत्रों का नामकरण उसी आधार पर करना आदि इसी तत्व के द्योतक हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इंडिया एज नोन टू पाणिनि, पृष्ठ 358-360। यह है सातवत वंश की भारत वर्ष को देन। भागवत 2.6.41 के अनुसार आद्य अवतार पुरुष परस्य, परमेश्वर का आद्य अवतार पुरुष है। यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में जिस पुरुष का वर्णन है वह यही अवतार पुरुष है। भागवत 11.4.3 में लिखा है आत्मश्रेष्ठ 5 भूतों के द्वारा परम पुरुष आदि देव नारायण जिस विराट ब्रह्मांड रूपी पुरी की रचना करता है जिसमें अपने अंश से प्रविष्ट होकर वह पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। इसी पुरुष से अन्य अवतारों का भी जन्म होता है। श्रीमद् भागवत में 3 स्थलों पर अवतारों का वर्णन है। उसके प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में 22 अवतारों का उल्लेख है, द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय में 23 और एकादश स्कंद के चतुर्थ अध्याय में 16 अवतारों का वर्णन है। इन अवतारों में सनत कुमार, सातवत विधि के उपदेष्टा नारद, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी, बुद्ध तथा अन्य प्रसिद्ध अवतारों की गणना है। महाभारत के नारायणी उपाख्यान में शूकर, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण 6 अवतार लिखे हैं। हरिवंश पुराण में भी 6 अवतार हैं, पर कृष्ण के स्थान पर वहां सातवत नाम दिया है और हंस, कूर्म, मत्स्य तथा कल्कि 4 अवतार और जोड़कर संख्या 10 कर दी गई है। वाराह पुराण हंस के स्थान पर बुद्ध लिखकर अवतारों के अन्य यही नाम स्वीकार करता है। अग्नि पुराण वाराह पुराण का अनुकरण करता है। वायु पुराण महाभारत के 6 अवतारों में दत्तात्रेय, पंचम, वेद व्यास और कल्कि के नाम जोड़कर संख्या 10 कर देता है। अमरकोश बुद्ध के पश्चात चतुर्व्यूह के देवों के नाम देता है। इस प्रकार आदि देव नारायण के पुरुषावतार के पश्चात जो अवतार हुए हैं उनकी संख्या सब पुराणों में एक समान नहीं है। अवतारों का वर्णन भी उन्हीं पुराणों में है जो भागवत धर्म से विशेष रूप से प्रभावित हैं। ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे प्रकट होता है कि अवतारवाद भागवत धर्म की ही विशेषता है। महाभारत के अनुसार भागवतों ने अपने धर्म में सांख्य, योग, तंत्र, वेद आदि सभी को सम्मिलित किया है। इसी आधार पर कुछ विद्वान अवतारवाद का मूल वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों तक में दिखलाते हैं। वेद के तो नहीं पर ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ, ऐतरेय और जैमिनीय तथा संहिताओं में तैतरीय संहिता के प्रमाण स्वमत समर्थन में इन विद्वानों ने उद्धृत किए हैं, अतः इन प्रमाणों पर भी विचार कर लेना चाहिए। नीचे हम शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण रूप में प्रयुक्त स्थलों को अपने हिंदी अनुवाद के साथ अविकल रूप में उपस्थित करते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण तथा तैतरीय संहिता के उद्धरण शतपथ ब्राह्मण जैसे ही हैं, अतः उसको उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। इन उद्धरणों में वराह, वामन, कूर्म तथा मत्स्य अवतारों के संकेत विद्वानों को उपलब्ध हुए हैं, अतः नीचे इन्हीं के संबंध में लिखा जाएगा। वराह शतपथ ब्राह्मण 14.1.2.11 अथ वराह विहतम इयति अग्रे आसीत इति इयति हवा इयम अग्रे पृथ्वी आस प्रादेश मात्रे ताम ए मूष इति वराह उज्जघान सो अस्याः पतिः प्रजापतिः तेनैव एनम् एतन्मिथुनेन प्रियेण धामना समर्थ्यति कृत्स्नं करोति मखस्यते द्युशिरो प्राध्यासं देव यजने पृथिव्याः सखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे यजुर्वेद 35:5 इति असावेव बंधुः। जो आख्यायिका इस अध्याय में दी गई है उसका संबंध यज्ञ के शिर अर्थात ऊर्ध भाग के साथ है, जिसे इसमें प्रवर्ग भी कहा गया है। यज्ञ यदि शिर रहित है तो वह कोई फल नहीं देगा। यज्ञ के अनुष्ठाता को इसी हेतु यज्ञ के शिर की रचना करनी चाहिए। इसके पूर्व प्रथम ब्राह्मण में यज्ञ के अनुष्ठाता को व्रतों के पालन के लिए निर्देश दिया गया है। इस द्वितीय ब्राह्मण में यज्ञ के शिर का विधान कैसे करना चाहिए उस विधि का वर्णन है। इस ब्राह्मण का शीर्षक महावीरादि प्रवर्ग पात्र संभरण ब्राह्मण है। मिट्टी और जल को मिलाकर जो मृत पिंड बनाए जाते हैं उन्हें महावीर कहते हैं। सर्वप्रथम कृष्णाचीन और अभ्री वज्र या वीर का वर्णन है। अभ्री औदुम्बरी औदुम्बर वृक्ष की या वैकंकति विकंकत वृक्ष की बनानी चाहिए। यह अभ्री अरत्नी मात्री एक हाथ भर अर्थात 24 अंगुल की हो। अरत्नी की मात्रा कोणी से कनिष्ठिका अंगुली तक एक हाथ की होती है। इस अभ्री को वाम हाथ में लेकर दक्षिण हाथ से स्पर्श करें। युंजते मन उत युंजते धियो आदि मंत्र का जाप करें। यह मंत्र यज्ञ के शेर बंधु अर्थात छिन्न यज्ञ शेर का बंधक है। इस अभ्री से मिट्टी खोद कर लाए और उसमें जल मिलाकर मृत पिंड बनाए। यज्ञ के छिन्न शेर का रस क्षरित हो गया था, यह द्यावा पृथ्वी को प्राप्त हुआ। यह मिट्टी पृथ्वी है और जल द्योलोक का प्रतीक है। इस मिट्टी और जल से अर्थात पृथ्वी और द्यो से मृतपिंड तैयार करें। यह मृतपिंड महावीर है, इन्हें उत्तर की ओर पिछाए हुए कृष्णा जी पर रखें। ये मृतपिंड रूप महावीर प्रादेश मात्र ऊंचे 3 पर्व वाले तथा घुंतिका के आकार के होते हैं। इसके पश्चात वल्मीक अर्थात वामी के अंदर की मिट्टी लाए और उसे भी कृष्णा जी अर्थात काले मृग के चर्म पर रखे। इसके पश्चात वराह अर्थात सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लाए और कृष्णा जी पर रखे। यति अग्र आसीत इति इस मंत्र में कहा गया है कि पृथ्वी पहले जल में डूबी हुई थी। जब वह जल में से निकली तब वह पहले इतनी ही प्रदेश मात्र थी। उस पृथ्वी को ए पृथ्वी तुम मृषः चोर के समान कहाँ अदृश्य थी, ऐसा कहकर वराह ने ऊपर मारा अर्थात ऊपर निकाला। वह वराह इस पृथ्वी का पति प्रजापति है। इन दोनों के मिथुन रूप प्रिय तेज से और यज्ञ का चिन्ह शेर समृद्ध अर्थात संपूर्ण होता है। मकस्य तेयस्य शिरो प्राध्यासम यह मंत्र इसका बंधु है। इसके पश्चात सोम की प्रतिनिधि रूप लता विशेष और अजाशीर को लाने का वर्णन है। कृष्णा जिन पर पूर्वोक्त 3 प्रकार की मिट्टी के पिंड लता और अजाशीर पांचों को संभाल कर रखे। यज्ञ 5 अर्थात 5 संख्या वाला होता है। यज्ञ 5 अर्थात 5 संख्या वाला होता है। महावीर शब्द यहाँ पर पुराणों में वर्णित दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंसक महादेव के गणों की ओर भी संकेत करता है। यहाँ शतपथ में ये महावीर विध्वंसक नहीं यज्ञ के शेर को जोड़ने वाले कहे गए हैं। वामन शतपथ ब्राह्मण प्रथम कांड द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण। देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्या परस्पृधिरे ततो देवा अनुव्यम इव आसुः अथ ह असुरा मेनिरे अस्माकमेव इदं खलु भुवनम इति। देव और असुर दोनों प्रजापति की संतान हैं। वे आपस में स्पर्धा करने लगे। इस स्पर्धा में देव असुरों से पराभूत हुए। देवों को पराजित करके असुर समझने लगे कि यह समस्त जगत हमारा ही है। ते ह ऊचु हंत इमाम पृथ्वीम विभजा महै ताम विभज्य उपजीवा मेति ताम औक्षणै चर्मभि पश्चात प्राणचः विभजमाना आभियुः। असुर हर्ष पूर्वक कहने लगे अब हम इस पृथ्वी को आपस में बांट लें और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। इसके पश्चात वे बैल के चर्मों से पश्चिम दिशा से प्रारंभ करके पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी को विभक्त करते हुए चले। तद्वै देवाः सुश्रुभुः विभजन्ते ह वा इमाम असुराः पृथिवीम् प्रेत तदेश्यामो यत्र इमाम असुरा विभजन्ते के ततः श्याम यत अस्यै न भजे महि इति ते यज्ञमेव विणुम पुरस्कृत्य इयुः। असुर इस पृथ्वी का आपस में बंटवारा कर रहे हैं, यह बात देवताओं के कान में पड़ी। उन्होंने सोचा इस समय चुप रहना अनुचित है, चलो जहाँ असुर पृथ्वी का विभाग कर रहे हैं वहाँ चले। यदि इस पृथ्वी का भाग हमें प्राप्त न हुआ तो हमारी क्या दशा होगी। अतः वे यज्ञात्मक विष्णु सर्व व्यापक यज्ञ भाव को अपने सामने रखकर चले। ते ऊचु अनु नो अस्याम पृथिव्याम आभजत अस्तेव नो अपि अस्याम भाग इति तेह असुरा असूयंत इव ऊचु यावदेव एषः विष्णु अभिषेते तावत्यो दध्मः इति। वहाँ पहुँच कर देव बोले हमें भी इस पृथ्वी के विभाजन में सम्मिलित कर लो, इसमें हमारा भी भाग है। असुर असूया के भाव से देवों की बात को न सहते हुए बोले जितनी भूमि को यह विष्णु यज्ञ सो कर व्याप्त कर ले उतनी तुमको देते हैं। वामनो ह विष्णुराज तद्देवा न जिहि जिरे महद्वैनो दूर्येनो यज्ञ सम्मित मधुर इति। विष्णु अर्थात यज्ञ भाव उस समय वामन अर्थात लघु रूप का था, फिर भी देवों ने असुरों के वाक्य का तिरस्कार नहीं किया, प्रत्युत कहा आपने हमें बहुत दिया क्योंकि आपने हमें यज्ञ सम्मित यज्ञ माप के बराबर दिया है। ते प्राणच विष्णु निपाद्य छंदो भी अभित पर्य गृहणन गायत्रेण द्वार छंदता परिगृहणामि 127 इति दक्षिण गतः त्रैशुभेन त्वा छंदसा परिगृहणामि 127 इति पश्चात जागतेन त्वा छंदसा परिगृहणामि 127 इति उत्तरतः तन छंदोभिः अभितः परिगृह्य अग्निम पुरस्तात् समाधाय तेन अर्चन्तः शाम्यन्तः चेरुः तेन इमां सर्वां पृथ्वीं समविन्दत् तद् यद् अनेन इमां सर्वां समविन्दत् तस्माद् वेदिर्नाम तस्मादाहु यावतो वेदी तावती पृथ्वी इति। वेतया ही इमाम सर्वाम समविंदत एवं ह वा इमाम सर्वाम सपत्ना नाम समृत्ते निर्भजति अस्य सपत्नान य एवं एतत् वेद। ऐसा विचार करके देवों ने यज्ञात्मक विष्णु को पूर्व की ओर सिर करके सुला दिया और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर सब ओर से गायत्री आदि छंदों के द्वारा उसे परिग्रहण कर लिया। छंदों के द्वारा उसे चारों ओर से परिगृहित करके उन्होंने पूर्व की दिशा में आह्वानीय अग्नि को प्रज्वलित किया और उस विष्णु रूप यज्ञ के द्वारा अर्चना करते हुए कर्मानुष्ठान जनित श्रम को सहते हुए पहले की भांति ही चलते रहे। चलकर इन्होंने उस यज्ञात्मक विष्णु के आधारभूत स्थान से इस समग्र पृथ्वी को भलीभांति प्राप्त कर लिया। यज्ञ स्थान का नाम तभी से वेदी पड़ा क्योंकि इसके द्वारा यह सब पृथ्वी प्राप्त हुई थी। इसी हेतु कहा जाता है जितनी वेदी है उतनी ही पृथ्वी है। इस वेदी के द्वारा ही यह सब पृथ्वी प्राप्त की गई। इस प्रकार सपत्नों अर्थात शत्रुओं से यह समग्र पृथ्वी छीनी गई। जो इस प्रकार जानता है वह इस पृथ्वी से शत्रुओं को भाग रहित कर देता है। ऊपर जो कथा दी गई है उसका भाव यही है कि जब देव असुरों से दिव्य शक्तियाँ आसुरी प्रवृत्तियों से पराजित हों तब उन्हें यज्ञ करना चाहिए, पूजा संगतीकरण और दान करना चाहिए। इसी क्रिया से देव असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने के लिए यह समग्र पृथ्वी वेदी का काम देती है। किसी भी समय किसी भी स्थान में यज्ञ भाव से कार्य किया जाएगा तो वह अवश्य आसुरी प्रवृत्तियों को शमन कर सकेगा। इसके आगे जो कथा दी गई है उसमें यज्ञकर्ता को यह निर्देश प्राप्त होता है कि वह ज्ञान भावना को मंत्रों द्वारा खींची गई रेखाओं में आबद्ध यज्ञ वेदी तक ही सीमित न कर दे। जहाँ यज्ञ विष्णु सीमित वेदी के रूप में वामन है लघु है वहाँ वह अपने विशाल रूप में विष्णु है सर्वव्याप्त है। अतः यज्ञ को उदार चेता तथा विशाल हृदय का बनना चाहिए। असुरों पर विजय प्राप्त करने का यही साधन है यही उपाय है। देवता का आह्वान और उसका संपादन इसी उपाय से संभव होता है। मत्स्य शतपद ब्राह्मण प्रथम कांड अष्टम अध्याय प्रथम ब्राह्मण मनवे ह वही प्रातः अवनेज्ञम उदकम आजहन यथेदम पाणिभ्याम अवनि जनाय आहरन्ति एवं तस्य अवनि निजानस्य मत्स्यः पाणि आपेदे। परिचारक प्रातः के समय मनु के हाथ पैर धोने के लिए पानी लाए जैसे इसे आजकल लाते हैं। मनु जब पानी से प्रक्षालन कर रहे थे उस समय एक मछली उस पानी में से उनके हाथ में आ गई। सह अस्नै वाचमवाद विभ्रीहि मा पारयिष्यामि त्वा इति कस्मान् मा पारयिष्यसि इति अघ इमा सर्वा प्रजा निर्वोढा ततस्त्वा पारयितास्मि इति कथं ते भृति इति। मछली मनु से बोली, मेरा पोषण करो, मैं तुम्हें पार लगाऊंगी। मनु बोले, मुझे किससे पार करेगी? मछली बोली, जल प्रवाह इस समस्त प्रजा को देशांतर को बाहर ले जाएगा, उससे मैं तुझे पार लगाऊंगी। मनु ने पूछा, तेरा भरण पोषण कैसे होगा? स होवाच, यावद वै शुल्लका भवामः भवी वै न तावत नाश्रा भवती, उत्मत्स्य एव मत्स्यम गिरति कुंभभ्याम मा अग्रे विभ्रासि। स यदा ताम अतिर्वर्धे असकूपम खात्वा तस्याम मा विभ्रासि। स यदा ताम अतिर्वर्धे अस मा समुद्रम अव्यवहरासि तर्हि वा अति नाश्रो भवितास्मि। मछली बोली, जब तक हम शुल्लक या छोटे रहते हैं तब तक हमारा नाश करने वाले बहुतेरे होते हैं, फिर मछली ही मछली को निकल जाती है। अतः आप मुझे पहले कुंभी में पानी भरकर रख दें और मेरा पोषण करें। जब कुंभी में बढ़कर ना समा सकूं तो एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरकर मुझे वहां रखकर पुष्ट करें। जब मैं बढ़कर उसको भी अतिक्रांत कर जाऊं तो मुझे समुद्र में ले जाकर रख देना, वहां पहुंचकर मैं नाश करने वालों से बच जाऊंगी। वर्धते समाम आगंता नावम नावम इति। वह मछली शीघ्र ही झश महामत्स्य हो गई, क्योंकि मछली पानी में बहुत शीघ्र बढ़ती है। मछली बोली, इतने वर्षों के बाद औघ जल प्रवाह आएगा, तब तुम नाव बनाकर मेरा ध्यान करना और जल प्रवाह के उठने पर उस नाव पर चढ़ जाना, इसके पश्चात उस औघ से मैं तुम्हें पार लगा दूंगी। तमेवं धृत्वा समुद्रम व्यवजहार स यतिथिं तत्समां परिविदेश ततिथौ समा नावमुपकल्प्य उपासान चक्रे स औघ उत्तिष्ठे नावमापेदे तम स मत्स्य उपन्यापुप्लुवे तस्य श्रृंगे नावः पाशं प्रति मुमोच तेन एतम उत्तरम गिरिम अति सुद्राव। मछली का इस प्रकार पोषण करके मनु ने उसे समुद्र में पहुंचा दिया। मछली ने जितने वर्षों का समय निर्देश किया था उतने वर्षों तक मनु नाव बनाकर ध्यान मग्न रहे। औघ के उठने पर वे नाव पर चढ़ गए और मछली भी मनु की नाव के पास औघ में से कूदती कूदती आ पहुंची। भवितव्यतावश नाव का पाश मछली के श्रृंग में अग्रभाग में प्रतिबद्ध हो गया। उसी पाश के सहारे मछली ने नाव को उत्तर गिरी हिमालय से लगा दिया। स हो वाच, अपि परम वैत्वा वृक्षे नावं प्रतिपद्नेष्व तं तु त्वा मा गिरौ तन्तम् उदकम् अन्तश्चैत्रीर यावद् उदकम् समवायात् तावत् अन्वव सर्पासि इति। स हतावत् तावदेव अन्वव सर्प अन्वव ससर्प तदपि एतद् उत्तरस्य गिरे मनो अवसर्पणमिति। औघौ हि ताः सर्वा प्रजा निरुपाह अथेह मनु एव एकः परिशिशिषे। मछली बोली, मैंने तुमको पार लगा दिया, अब इस वृक्ष में नाव को बांध दो, इस पर्वत पर रहते हुए तुम्हारे अंदर यह जल प्रवेश नहीं कर सकेगा, फिर जैसे जैसे यह जल नीचे उतरता जाए वैसे ही वैसे तुम उसके पीछे पीछे उतरते जाना। समय प्राप्त होने पर मनु नीचे उतर आए। जिस मार्ग से मनु नीचे आए उस मार्ग को उत्तरगिरी पर आज तक मनु का अवसर्पण मार्ग कहा जाता है। औघ सारी प्रजा को बहाकर ले गया, यहाँ केवल एक मनु ही अवशिष्ट रहे। इसके पश्चात शतपथ के स्थल पर मनु का तपस्या करना, पाक यज्ञ करना, कीड़ा से भेंट होना और प्रजा की उत्पत्ति आदि का वर्णन है। कीड़ा को आगे चलकर पशु भी कहा गया है। पशुवो वा ईड़ा। 13 पूर्व कांड 7 अध्याय 5 प्रथम ब्राह्मण। पूर्वम उपदधाति रसौ वै कूर्मो रसमे वै सुपदधाति यो वै स एषां लोकानाम् अप्सु प्रविद्धानां परांग रसोऽत्यक्षरत् स एष कूर्मः तमेव एतत् उपदधाति यावानु वै रसः तावानात्मा स एष इमे एव लोका। कूर्म के संबंध में स्थापना की जाती है, कहा जाता है रस ही कूर्म है, रसात्म रूप से ही इसका कथन किया जाता है। जो रस है वही कूर्म है, जल में मग्न इन पृथ्वी लोगों का जो रस बाद में स्रवित हुआ है वही कूर्म है, अतः वही रस कूर्म नाम से पुकारा जाता है। जितना रस होता है उतने ही परिमाण का आत्मा अर्थात शरीर होता है, क्योंकि देह के अंदर रस ही अंतर्भाव से कार्य करता है। वह रस रूप कूर्म ये लोग ही है, रस रूप कूर्म में समस्त लोग सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। तस्य यत् अधरं कपालं अयं स लोकः तत् प्रतिष्ठितमेव भवति, प्रतिष्ठित इव हि अयं लोकः। अत यत् उत्तरं साध्यौ तद् व्यवगृहीतान्तमेव भवति, व्यवगृहीतान्ता इव हि द्यौ। अत यत् अन्तरा तद् अन्तरिक्षं स एष इमे एव लोका इमान एव एतल्लोकानुपदधाति। उस कूर्म का जो कठिन त्वचा वाला नीचे का कपाल है वह यह पृथ्वी लोक है। जैसे नीचे का कपाल सारे शरीर की प्रतिष्ठा या आधार होता है, उसी प्रकार से पृथ्वी सबका आधार है। जो ऊपर का कपाल है वह जीव लोक है। जैसे कूर्म का ऊपर का कपाल मंडलाकार रूप में अपने अंतिम स्वरूप को झुकाए हुए और समस्त शरीर को आच्छादित किए हुए प्रतीत होता है, वैसे ही यह जीव लोक है जिसके अवनत प्रांतों को पृथ्वी ने पकड़ रखा है। दोनों कपालों के बीच में है जो वही यह अंतरिक्ष है, अतः वह पूर्ण ये पृथ्वी आदि लोक ही है, अतः पूर्ण के नाम से इन लोगों का ही कथन होता है। तम अभ्यनक्ति गधना हधना घृतेन दधि ह एव अस्य लोकस्य रूपं घृतम अंतरिक्षस्य मधु अमुष्य से नैव एनम एतद् रूपेण समर्थयति। अथो दधि हैव अस्य लोकस्य रसः घृतमंतरिक्षस्य मधु अमुष्य से नैव एनम एतद् रसेन समर्थयति। इस कूर्म को दधि मधु घृत से समृद्ध किया जाता है। दधि इस पृथ्वी लोक का रूप है, घृत अंतरिक्ष का और मधु उस लोक का, अतः कूर्म को अपने ही रूप से समृद्ध किया जाता है क्योंकि इन लोगों का रूप ही तो पूर्ण है। दधि इस पृथ्वी लोक का रस है, घृत अंतरिक्ष का और मधु उस लोक का, अतः इसे अपने ही रस से समृद्ध किया जाता है। कारण इसके भाष्य में लिखते हैं कि दही में पृथ्वी की भांति सघनता है, दही के ऊपर घी होता है, अंतरिक्ष भी पृथ्वी के ऊपर है। मधु वृक्ष पर्वत शिखर आदि के ऊपरी भागों में अवस्थित पाया जाता है, अतः उसे जीव लोकात्मक कहा गया है। अथवा मधु में मधु रस रहता है जो सोमात्मक है और सोम की अवस्थिति जीव लोक में मानी गई है, अतः यह मधु जीव लोक रूप है। प्राकारांतर से यहाँ दधि आदि के द्वारा संपादित समृद्धि की प्रशंसा की गई है। स यत् कूर्मो नाम एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापति प्रजा असृजत, यत् असृजत अकरोत् तत् यत् अकरोत् तस्मात् कूर्मः कश्यपो वै कूर्मः तस्मात् आहु सर्वा प्रजा काश्यप्यः इति। जो यह कूर्म नाम है प्रजापति ने इसी का रूप धारण करके प्रजाओं की रचना की, जिसे रचा उसको किया, अतः करने रूप क्रिया से कूर्म नाम पड़ा है। कश्यप प्रजा कारक है, अतः कश्यप ही कूर्म है, इसी हेतु समस्त प्रजा काश्यप ही कश्यप की कहलाती है। इसके पश्चात कूर्म को आदित्य तथा प्राण कहा गया है क्योंकि ये दोनों ही प्रजा की उत्पत्ति तथा जीवन के कारण है। कथाओं पर एक दृष्टि, ऊपर हमने शतपथ ब्राह्मण की जिन ज्ञान वर्धक कथाओं को उद्धृत किया है उनमें से वामन वाली कथा तैतरीय संहिता 2.1.3.1 में, वराह की कथा तैतरीय संहिता 7.1.5.1 में तथा कूर्म की कथा जैमिनीय ब्राह्मण 3.272 में भी किंचित रूपांतर के साथ आती है। क्या ये कथाएं अवतारवाद की पोषक हैं? हमें तो इन कथाओं में अवतारवाद की गंध भी नहीं मिली। कूर्म की कथा में याज्ञवल के स्वयं कूर्म का अर्थ रस आदित्य और प्राण करते हैं। उन्होंने कूर्म के रूपक से सृष्टि विद्या की एक अद्भुत बात कह दी है। जैसे कूर्म के अधस्तन तथा ऊर्ध्व दो कपाल होते हैं, वैसे ही सृष्टि के दो सिरे हैं। एक सिरे पर पृथ्वी है तो दूसरे सिरे पर जीवलोक है, दोनों के बीच में अंतरिक्ष है। जो बात ब्रह्मांड पर घटती है वही उसके सूक्ष्म रूप पिंड पर भी। शरीर में पैर पृथ्वी रूप है तो सिर जीव स्थानीय, बीच में मन रूपी अंतरिक्ष है। आदित्य के भी इसी प्रकार दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो पक्ष हैं, शरद काल बीच में है। प्राण की भी प्राण तथा अपान दो मुख्य गतियां हैं, ज्ञान बीच की गति है। कूर्म का रस रूपी या केवल किन्हें स्पष्ट कर दिया है। कूर्म यदि रस में रहता है, जल का निवास स्थान है, तो समस्त लोक भी रस में रहते हैं। पिंड की पिंडी रस के कारण ही अस्तित्व रखती है, रस रूप वेद ही उसका आधार है। इसी प्रकार समस्त लोक लोकांतर अपने अंदर निहित सदा स्वरूप विद्युत के आधार से ही स्थित है, कर्म को जाके बल से नहीं कर सकती, कहा है उसे उत्पन्न प्रजा को काट सकती। सृष्टि का रूप कर्म के समान है, ऐसा हम अभी लिख चुके हैं। पूर्व में अंदर निहित क्रिया उसके नामकरण की हेतु है, सृष्टि में भी रचना क्रिया का अंतर्भाव है। पूर्ण को दधि मधु और घृत से समृद्ध करो, इसका क्या अर्थ है? सायण इस स्थल के भाष्य में दधि का पृथ्वी से, घृत का अंतरिक्ष से तथा मधु का जीव रूप से संबंध जोड़ते हैं। दधि पृथ्वी रूप बाह्य शरीर को पुष्ट एवं समृद्ध करता है, इसे सभी वैद्य स्वीकार करते हैं। घृत मानसिक शक्ति का संवर्धक है जो शरीर के अंदर है। सबसे अंत में मस्तिष्क का बुद्धि तत्व है, इसका संवर्धक मधु है। मधुमक्खी न जाने कितने फूलों के रस से मधु का निर्माण करती है, मधु का इसी हेतु दूसरा नाम सोम है, यह बुद्धिवर्धक है। सोम का एक अर्थ दे देती है, वीर्य अनेक रसों का अंतिम पर्याय वह सूक्ष्म रूप है। सोम और वीर्य दोनों का रंग शुक्र अर्थात श्वेत है, तत्वगुणी बुद्धि भी श्वेत है। बुद्धि की समृद्धि इसी मधु रूप सोम से होती है। सृष्टि विद्या का जो ज्ञान इस पूर्ण की कथा से होता है, वह अवतारवाद से संबंध रखने वाली पौराणिक पूर्ण कथा में कहा है। मत्स्य वाली कथा शतपथ ब्राह्मण में ऐतिहासिक क्रम में घटित जल प्लावन की वास्तविक घटना से संबंध रखती है। याज्ञवल्क्य ने उसे केवल चमत्कार पूर्ण ढंग से उपस्थित कर दिया है। जल प्लावन में किसी समय समुद्र बढ़ता हुआ हिमालय से टकराने लगा था, उसमें पड़कर यहाँ रहने वाली देव जाति संभवतः नष्ट हो गई। एकमात्र मनु दैव गत्या जीवित रह सके। यह भी संभव है कि कुछ व्यक्ति भागकर दूसरे देशों को चले गए हों और वहाँ जाकर उन्होंने जल प्लावन की कहानी सुनाई हो। तभी तो इस भयंकर घटना का रूप यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट तथा मिश्र और अरब के कथा साहित्य में अभी तक अवशिष्ट रहा है। शतपथ ब्राह्मण की इस कथा में अवतारवाद का लेश भी नहीं है। वामन वाली कथा में वामनो ह विष्णुरास पद अवतार की सूचना नहीं देता। इसका तात्पर्य निरुक्त की पद्धति पर यही करना उचित होगा कि जो वामन है लघु या सूक्ष्म रूप में है, वही विष्णु अथवा विशाल रूप में है। सूक्ष्म रूप में जो तत्व कार्य कर रहा है, वही तत्व व्यापक रूप में भी क्रियाशील है। जो प्रभु स्वल्प जल बिंदु में समाहित है, वे ही समग्र विश्व में व्याप्त है। विष्णु का अर्थ यज्ञ भी है। यज्ञ अपने लघु रूप में गार्हपत्याग्नि में दिखाई देता है, वही यज्ञ अपने विराट रूप में इस ब्रह्मांड भर में हो रहा है। वराह वाली कथा का मूल एक विद्वान को ऋग्वेद 8:70-10 में प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि विद्वत जन भी वेद में शब्द विशेष को पकड़कर वैदिक काल के पश्चात घटित हुई घटनाओं तथा चरितावलियों का मूल उसमें ढूंढने लगते हैं। वेद में राधा शब्द मिल गया तो इन्हें वहाँ वृष भानुजा राधा के दर्शन होने लगते हैं। सीता शब्द मिल गया तो जनक जा सीता का भ्रम हो जाता है। राम शब्द मिल गया तो रामावतार और वराह शब्द मिल गया तो शुक्रावतार इन्हें वेद में दिखाई देने लगता है। जो राम और कृष्ण सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वेद का अध्ययन करते हैं, वेद उनका अपने अंदर उल्लेख करेगा। यह अत्यंत असमीचीन एवं तर्कशून्य बात इनके मस्तिष्क में कैसे घर कर जाती है, समझ में नहीं आता। राम कृष्ण सीता आदि के नाम मनु के अनुसार वेद के शब्दों को देख कर रखे गए। यह तथ्य वेदार्थ करते हुए हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। वराह की कथा का वेद में चिन्ह तक नहीं है। वराह का अर्थ है श्रेष्ठ शब्द, सुंदर कथन अथवा वह पदार्थ जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। ऋग्वेद का यह मंत्र अर्थ सहित नीचे दिया जाता है। विश्वेत ता विष्णु राभरत दुरुक्रमस्वेषित शतम महिषान शीर पाक मोदनम वराह मिंद्र एमुषम ऋग्वेद 8:70-10। इंद्र परमैश्वर्यशाली विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर ने जो उरुक्रम महान सामर्थ्य से युक्त है, जीवों के प्रेम से प्रेरित होकर उनके लिए वे सब पदार्थ इस ब्रह्मांड में भर दिए हैं जो इस लोक में जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, जिनकी अभिलाषा की जाती है और जिनकी प्रशंसा की जाती है, जैसे शीर पाक ओदन तथा सैकड़ों महिष नाम के पशु आदि अथवा जड़ी बूटियाँ। इस मंत्र में न कहीं शुक्र अवतार है और न उससे संबद्ध पौराणिक कथा का कोई संकेत। जिन विद्वानों ने वराह का अर्थ शुक्र किया है, वे भी उसका नाम एमुष लिखते हैं, विष्णु का अवतारी नाम नहीं लिखते। अब शतपथ ब्राह्मण की कथा पर दृष्टिपात कीजिए। ऋग्वेद के मंत्र में जो एमुष शब्द आया है, वह यहाँ भी विद्यमान है और उसका ए धन मुष दो टुकड़े करके अर्थ किया गया है। सामान्यतः शतपथ में वराह द्वारा खोदी गई मिट्टी को यज्ञ के लिए लाने का वर्णन है। प्रसंग वर्ष यह भी लिखा गया है कि जल के पश्चात जब पृथ्वी निकली, तब वह उतने ही परिमाण की थी जितनी शुक्र के पृथ्वी को खोदने पर उसके थूथड़े पर रखी हुई मिट्टी होती है। जल में से निकलती हुई पृथ्वी के रूप को समझाने के लिए यह अलंकार प्रयुक्त हुआ है। शुक्र पृथ्वी को खोद खोद कर उसमें से नागर मोथा आदि की जड़ों को निकालकर खाता है। इस क्रिया में उसके थड़े पर कुछ मिट्टी लगी जाती है। शुक्र और वराह दोनों शब्दों का एक जैसा अर्थ है। सू सू ऐसा शब्द करने वाला या वर अच्छा आह बोलने वाला। जल भी कुछ ऐसा ही शब्द करता है। उसकी उद्वेलित तरंगों से सू सू जैसी ध्वनि निकलती है। अतः शब्दायमान तरंगों के साथ जल शुकर नाम को चरितार्थ कर सकता है। प्रजापति परमात्मा जब जल से पृथ्वी भाग को सृष्टि रचना में ऊपर निकालता है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने जल में डूबी हुई चोर के समान छिपी हुई पृथ्वी को मारकर ऊपर की ओर फेंक दिया है। चोर को भी मारकर घर के अंदर से बाहर निकालते हैं। पृथ्वी मानो जल रूप घर में छिपी थी। प्रजापति ने उसे मारकर ऊपर फेंका बाहर निकाला। सर्वप्रथम पृथ्वी का जो भाग ऊपर निकलता है वह जल रूप शुकर के थूथड़े पर रखी हुई मिट्टी के परिमाण का होता है अर्थात पृथ्वी का अति स्वल्पांश दिखाई देता है। शुकर भी पृथ्वी को खोदता है मारता है। इसी हेतु शतपथ में वराह विहत शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कथा में भी अवतारवाद का उल्लेख कहीं पर नहीं है। जल में से निकलती हुई पृथ्वी को शुकर के थूथड़े पर रखी हुई मिट्टी के रूपक द्वारा समझाने का प्रयत्न मात्र किया गया है। निखिल सृष्टि एक यज्ञ का रूप है। आकाश वायु अग्नि और जल के निकल आने पर भी यह सृष्टि रूपी यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक पृथ्वी भी इनके साथ न निकले। सृष्टि रूपी यज्ञ का शेर मानो तब तक छिन्न है कटा हुआ है। पृथ्वी के आविर्भाव के समय ही यह शेर सृष्टि के ऊपर बंधता है। इसी हेतु यज्ञ अनुष्ठान से पूर्व तीन प्रकार की मिट्टी जिसका शतपथ में उल्लेख हुआ है लाई जाती है और जल में सानकर उसके पिंड बनाए जाते हैं जिन्हें कृष्णाजिन पर रखा जाता है। वाल्मीक वपा वराह खास तथा अभ्री खास मिट्टी पवित्र मानी जाती है। इन तीनों के साथ लता तथा अजा शीर मिलाकर पांच वस्तुएं हो जाती हैं। यज्ञानुष्ठान में इन पांचों का प्रयोग होता है। यज्ञ के शिर अर्थात ऊपरी भाग का निर्माण इन्हीं से होता है। शतपथ ब्राह्मण की आख्यायिकाएं अवतारवाद के समर्थक नहीं है। विष्णु के अवतार का उल्लेख तो इन कथाओं में कहीं पर भी नहीं है। प्रजापति परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तब इस सृष्टि का रूप क्या होता है इसे कूर्म और वराह की कथाओं द्वारा समझाया गया है। कूर्म के रूपक को याज्ञवल्क्य ने शतपथ में अत्यंत स्पष्ट कर दिया है अतः उसके संबंध में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। वराह वाले रूपक को इतना स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी अतः उसकी ओर याज्ञवल्क्य ने केवल एक पद में संकेत मात्र कर दिया है। मत्स्य वाली कथा जल प्लावन की ऐतिहासिक घटना से संबंध रखती है अतः अवतारवाद से एकदम असंपृक्त है। वामन वाली कथा में विष्णु अर्थात यज्ञ के लघु और विशाल दो रूप वर्णित हुए हैं। विष्णु शब्द के वहाँ आ जाने से विष्णु का पौराणिक अवतार सिद्ध नहीं होता। विष्णु का अर्थ यज्ञ है इस बात को शतपथ ने कई बार कहा है। जब योगाचार्य भगवान श्री कृष्ण ने पांचरात्र अथवा भागवत धर्म को अभिनव रूप प्रदान किया तब उसके अनुयायियों ने नारायण विष्णु और कृष्ण में एक ही विभूति के दर्शन किए। अवतारवाद की जड़ यहीं से पड़ी। श्री कृष्ण को महाभारत तथा पुराणों में नारायण का अवतार कहा गया है जो महाभारत के अनुसार एक ऋषि है। भागवतों ने इन्हीं नारायण को परात्पर सत्ता माना है। यह ब्रह्मांड रूपी पुरुष इन्हीं आदि देव नारायण का प्रथम अवतार है ऐसा हम भागवत के प्रमाण से पीछे लिख चुके हैं। गीता श्री ऊर्जा तथा विभूति से संपन्न तत्वों को भगवान के तेज से संभूत मानती है अतः भागवतों या सात्वतों को जहाँ कहीं प्राणी जगत में असाधारणता या विभूति दिखाई दी वहाँ उन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार अवतार की कल्पना कर ली मान्यता के अनुकूल अवतार की कल्पना कर ली। मत्स्य के कारण मनु जल प्लावन में बच सके और मानव वंश का प्रवर्तन करने में समर्थ हुए अतः भागवतों को इस मत्स्य में भगवान की विभूति दिखाई दी और पुराणों में मत्स्य अवतार की कथा प्रसिद्ध हो गई। शतपथ ने इस सृष्टि को द्यावा पृथ्वी को कूर्म के रूपक द्वारा समझाया था। कूर्म का ऊर्ध कपाल द्यौ और अधस्तन कपाल पृथ्वी है अतः इस सृष्टि रूप कूर्म को अवतार मानने में कठिनाई ही क्या थी। सृष्टि है ही नारायण का आद्य अवतार। प्रजापति ने वराह के रूप में इस पृथ्वी को जल से बाहर किया। इस कथा पर कल्पना का पुट चढ़ाकर और भी रंगीनी दी गई और वराह भगवान का एक अवतार माना गया। वामन रूप यज्ञ के सहारे ही देव असुर से पृथ्वी को छीन सके अतः वामन भी अवतार माने गए। अवतार का उद्देश्य ही देवों की रक्षा तथा असुरों का विनाश करना है। यह कार्य भागवतों को जहाँ दिखाई दिया वहीं अवतार की कल्पना कर ली गई। जिसने जगत की रक्षा के लिए असाधारण कार्य कर दिखाया वही अवतार हो गया। एक ओर संकादे ऋषि ऋषभ देव कपिल राम परशुराम व्यास आदि अवतार माने गए तो दूसरी ओर गौतम बुद्ध तक उस सूची में सम्मिलित कर लिए गए। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र तुलसी दर्शन पृष्ठ 49-50 प्रथमा आवृत्ति। भागवत धर्म भक्ति प्रधान धर्म रहा है। पुराणकारों ने इस धर्म के अभ्युत्थान में श्लाघनीय योग दिया है। पौराणिक सूतों को ब्रह्म क्षत्र संभव कहा गया है। यादव वंश भी पुराणों के साक्ष्य से ब्रह्म क्षत्र संभव है। विश्व की दो महान शक्तियों के सम्मिलन से श्री कृष्ण जैसी एक महान विभूति उत्पन्न हुई, जिसने अपने समय के प्रचलित वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण सुधार किए। उनमें एक ओर शास्त्र शक्ति की बलवती कर्मनिष्ठा थी, तो दूसरी ओर ब्राह्म शक्ति की मोहनीय संज्ञानता एवं योग परायणता। सूतों के अंदर भी ये दोनों शक्तियाँ थी। व्यास जैसे महर्षि से इतिहास पुराण में दीक्षित होकर लोमहर्षण तथा उग्र श्रवा ने पुराणों में वैदिक आख्यायिका सूत्रों की आलंकारिक योजना एवं संवर्धना द्वारा जो व्याख्या की, वह मनोरंजन के साथ जनता के लिए अनुपम उपदेश सेवती बन गयी। भागवत धर्म को इन आख्यायिकाओं द्वारा बड़ा बल मिला। इतिहास तथा आख्यायिकाओं पर कल्पना का आवरण चढ़ाकर इन पौराणिकों ने एक ओर भागवतों के अवतारवाद की प्रतिष्ठा की, तो दूसरी ओर भक्ति कांड का भी प्रभुत्व प्रचार किया। यह अवश्य सत्य है कि ब्राह्मण ग्रंथों की जो आख्यायिकाएं ज्ञान विज्ञान की किसी शाखा को अपने आवरण में लपेटे रहती थी, वह ज्ञान विज्ञान पौराणिक आख्यायिकाओं में जाकर तिरोहित हो गया। ब्राह्मण ग्रंथों की आख्यायिकाओं को भागवत धर्म की मान्यताओं के अनुकूल इस युग में विकासवाद की दृष्टि से भी समझाने का प्रयास किया गया है। विकास में मानव की सृष्टि अन्य सब प्राणियों के पश्चात हुई है। जल के बाद पृथ्वी निकली, तो प्राण तत्व भी प्रथम जल के साथ ही संबद्ध रहा होगा। प्राणियों में मत्स्य जल का जीव है, वह स्थल पर नहीं रह सकता, जल में ही उसका जीवन निहित है। अतः पुरुष रूप ब्रह्मांड के अवतार के पश्चात प्राणी जगत का प्रथम जीव मत्स्य प्राण तत्व की दृष्टि से सर्वप्रथम अवतार माना गया। मत्स्य के पश्चात कूर्म आता है, जो जल और स्थल दोनों का जीव है। वह पानी में भी रहता है और पृथ्वी पर भी। अतः विकास की दृष्टि से इसे अवतार की दूसरी कोटि में रखा गया। वराह विशुद्ध रूप से स्थल का प्राणी है, परंतु कीचड़ से भी प्रेम करता है। विकास के प्रथम स्तर का स्नेह कुछ न कुछ इसके साथ भी चिपटा हुआ है, अतः इसे अवतार की तीसरी कोटि में रखा गया। नरसिंह एक ओर पशुत्व का द्योतक है, तो दूसरी ओर मनुष्यत्व का। सिंह पशुओं में राजा है, पशुत्व का सर्वश्रेष्ठ अंश उसके अंदर है, और साथ ही नरसिंह रूप में वह नरत्व की ओर झुका हुआ है। पाशव कोटि से ऊपर तथा नर कोटि से संप्रक्त नरसिंह का रूप विकास की दृष्टि से उत्तम माना जाना चाहिए। अतएव यह भी अवतार कोटि में सम्मिलित किया गया और इतिहास में कल्पना मिलाकर नरसिंह अवतार की कहानी गढ़ ली गई, जो चमत्कार पूर्ण एवं कौतूहल वर्धक होने के साथ ही भगवत भक्ति का उन्नयन करती है। इसके पश्चात मानव का खर्व रूप वामन जी आते हैं, जो लघु एवं विशाल दोनों रूपों को अपने अंदर छिपाए हुए हैं। मानव में अपने से नीची कोटि के प्राणियों की लघुता है, तो साथ ही देव कोटि की दिव्यता तक पहुंचने की विशालता भी है। वामन और विष्णु के संबंध की व्याख्या इसी प्रणाली पर की जा सकती है। वामन के पश्चात विकास में पूर्ण मानव की अवस्था आती है। पौराणिकों को इन मानवों में जहां चरित्र गुण आदर्श आदि की दृष्टि से लोकोत्तरता दिखाई दी है, वहीं पर इन्होंने अवतारवाद का आरोप कर दिया है। एक बात अवश्य ध्यान में रखी गई है कि वह महामानव लोक तथा वेद दोनों का समर्थक हो, दोनों में से किसी का विरोध न करता हो। अवतारवाद इस प्रकार भागवत धर्म के अभिनव रूप के साथ प्रारंभ होता है, जिसके प्रतिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है। अवतारों में इसी हेतु पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को ही माना जाता है और उन्हें साक्षात विष्णु कहा जाता है, क्योंकि वैष्णव धर्म में प्रजापति ब्रह्मा और संहारकर्ता रुद्र देव कोटि में रखे गए हैं। पीछे हमने विष्णु की महत्ता पर जो प्रकाश डाला है, वह भी वैष्णव धर्म की इसी मान्यता को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण अन्य सभी अवतारों से ऊपर है। परशुराम पांच कलाओं के अवतार है, राम में 12 कलाएं हैं, परंतु श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं। वे साक्षात भगवान हैं। अन्य अवतार उनसे निम्न कोटि के हैं। ऐतिहासिक अवतारी महापुरुषों में राम और कृष्ण दो के व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व विकास पर हम भारतीय साधना और सूर साहित्य में पर्याप्त सामग्री दे चुके हैं, अतः उसके पुनः उद्धरण द्वारा पृष्ठ प्रेषण की यहाँ आवश्यकता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संबंध में हम कुछ विचार नीचे प्रस्तुत करते हैं। राम वैष्णवाचार्यों ने अवतारों के अनेक भेद तथा प्रभेद किए हैं, और जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, राम को उन्होंने साक्षात अवतार की कोटि में नहीं रखा। वे स्वरूपावेश अवतार की श्रेणी में आते हैं। राम का यह अवतारी रूप भागवत के नवम स्कंद में वर्णित हुआ है। भागवत संभवतः 3री शताब्दी तक बन चुकी थी। सूर सौरभ के परिशिष्ट एक में इस विषय के पुष्कल प्रमाण हमने प्रस्तुत किए हैं। वाल्मीकि रामायण ने अनेक विद्वानों के अनुसार अपना प्रचलित रूप ईसा की 2री शताब्दी तक प्राप्त कर लिया था। उसके बाल तथा उत्तर दो कांडों में राम को स्पष्ट रूप से ईश्वर का अवतार माना गया है। अयोध्या कांड का निम्नांकित श्लोक भी राम को विष्णु का अवतार कहता है। स ही दैवैरुद्दीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः प्रार्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। महाभारत के आरण्य पर्व के अनुसार भी राम विष्णु के अवतार हैं। रामो महाबलः विष्णुर मानुष्य रूपेण चचार वसुधा इमाम 3:147-22 विष्णुना वसता चापी गृहे दशरथस्य वै 3:299-18 हरिवंश पुराण 41:122 राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न चारों बंधुओं को विष्णु के ही चार रूप मानता है। भागवतों का चतुर्व्यूह रूप भी चारों भ्राताओं के साथ परवर्ती साहित्य में संगठित हुआ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अध्याय 212 तथा नारद पुराण का उत्तरखंड अध्याय 75 इस संबंध में देखने योग्य है। अध्यात्म रामायण आदि अर्वाचीन रचनाओं में चारों बंधुओं को पांचरात्र संहिताओं के अनुकरण पर विष्णु शेष शंख तथा सुदर्शन का अवतार माना गया है। रेवरेंड फादर कामिल बुल्के ने अपनी थीसिस राम कथा में रामचरित्र संबंधी अमूल्य सामग्री एकत्र कर दी है। पूर्ण श्लोक राम की पावन जीवन गाथा कितनी लोकप्रिय और आकर्षक रही है इसका एक प्रमाण बौद्ध साहित्य है जिसमें राम को बोधिसत्व मानकर उनकी जीवन कथा वर्णित हुई है। यह साहित्य ईसा से कुछ शताब्दी पूर्व का है। जैन साहित्य में भी राम कथा मिलती है। पुरातत्व वेत्ता कहते हैं कि कौशल की राजधानी साकेत को शुंग वंश के राज्यकाल में ईसा से 200 वर्ष पूर्व अयोध्या नाम दिया गया। इस नामकरण के साथ राम का जीवन भी अभिनव रूप में प्रख्यात हुआ होगा इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मणों ने कृष्ण के साथ राम को विष्णु का अवतार स्वीकार किया। बौद्ध धर्म में वे बोधिसत्व समझे गए और जैन धर्मानुयायियों ने उन्हें 8वें बलदेव डॉक्टर कामिल बुल्के रामकथा पृष्ठ 146 के रूप में उपस्थित किया। राम कथा इस प्रकार भारत के इन तीन प्रमुख संप्रदायों में ईसा से पूर्व ही प्रख्यात हो चुकी थी। जावा सुमात्रा तथा कम्बोज में मंदिरों और प्रस्तर खंडों पर खुदी हुई राम जीवन की घटनाएं मैक्सिको का राम सीतोत्सव आदि ऐसे प्रमाण है जो राम गाथा को 10वीं शताब्दी के पूर्व द्वीप द्वीपांतरों में फैली हुई सिद्ध करते हैं। परवर्ती काल में राम कथा की प्रसिद्धि तथा राम के विष्णु अथवा नारायण का अवतार माने जाने में तो कोई अंतर नहीं आया पर भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा का प्रचार इस देश में 10वीं शताब्दी के अनंतर ही हो पाया। इसका कारण राम के नाम पर किसी संप्रदाय विशेष की स्थापना का अभाव ही प्रतीत होता है। स्वर्गीय भंडारकर के मतानुसार आचार्य मध्व स्वामी आनंद तीर्थ बद्रिक आश्रम से राम की प्रतिमा लाए और 1264 ईस्वी के लगभग उन्होंने नरहरि तीर्थ को राम और सीता की प्रतिमाएं लाने के लिए जगन्नाथपुरी भेजा। अतः 11वीं शताब्दी के आसपास राम संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ होगा। 13वीं शताब्दी में हेमाद्री ने व्रतखंड के अंदर तथा वृद्ध हारिथ ने अपनी स्मृति के अंदर राम पूजा का विधान लिखा है। राम तापनी उपनिषद भी इसी समय के आसपास लिखी गई होगी। अध्यात्म रामायण संभवतः 16वीं शताब्दी की रचना है। अन्य वैष्णव तंत्रों की भांति इस पर भी सांख्य शास्त्र का प्रभाव पड़ा है। अध्यात्म रामायण सीता को मूल प्रकृति तथा योग माया का रूप मानती है। एषा सा जानकी लक्ष्मीर योग माया की विश्रुता 2:5:11 मूल प्रकृति रित्य के राहुल मारेति केचन 3:3:22 अध्यात्म रामायण प्रथम अध्याय में राम को परब्रह्म तथा लक्ष्मण को शेष का अवतार कहती है। इस ग्रंथ का रचयिता कौन है इसका समाधान पूर्वक उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। रामानंद के संप्रदाय में इस रामायण की अधिक मान्यता है। कुछ विद्वान तो इसे रामानंद की ही रचना स्वीकार करते हैं। इसके अंतिम अंश का 5वां अध्याय राम गीता है जिसमें राम लक्ष्मण को ज्ञान का उपदेश देते हैं। स्वामी रामानंद के साथ राम भक्ति की गंगा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाहित होने लगी और पूर्ण अवतार का जो पद भगवान कृष्ण को प्राप्त था वही पद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी प्राप्त हो गया। जनता की अभिरुचि तथा आचार्यों के विश्लेषण बुद्धि में कितना अंतर है। वासुदेव कृष्ण जिन्हें साक्षात भगवान घोषित किया गया था एक प्रदेश तक सीमित रह गए परंतु राम जो केवल स्वरूपावेश अवतार की अपेक्षाकृत हीन कोटि में रखे गए थे जन जन के मानस में प्रतिष्ठित हो गए। राम और कृष्ण दोनों अवतारों की महिमा दक्षिण के आलवार भक्तों की रचनाओं में प्रकट हुई है। कुलशेखर ने राम के प्रति विशेष रूप से तथा कृष्ण के प्रति सामान्य रूप से गीत लिखकर अपनी भक्ति भावना अभिव्यक्त की है। आलवारों के उपरांत दक्षिणात्य आचार्यों ने भी इन्हीं दो अवतारों के प्रति अपनी विशेष आस्था प्रदर्शित की। आगामी प्रकरण इन्हीं आलवार भक्तों तथा आचार्यों से संबंध रखते हैं। आलवार श्रीमद् भागवत 11:5:38-39:40 में लिखा है कि विष्णु के परम भक्त दक्षिण में ताम्रपर्णी कृतमाला वैगे पयस्विनी पलर कावेरी और महानदी पेरियर के तटों पर उत्पन्न होंगे। ये आश्चर्यजनक है कि ताम्रपर्णी प्रदेश में आलवार, नाम आलवार और मधुर कवि आलवार उत्पन्न हुए। कृतमाल में पेरिय आलवार और उनकी दत्तक पुत्री अंदाल उत्पन्न हुई। पयस्विनी में पोयगे आलवार, भूतत आलवार, पेय आलवार और तेरुम ऋषय पिरान, कावेरी में टोंडर अडिपोडीय आलवार, तिरुपाणी आलवार एवं तिरुमंगई आलवार और महानद प्रदेश में पेरिय आलवार तथा कुलशेखर पेरुमाल उत्पन्न हुए। ये सभी परम वैष्णव भक्त हुए हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में भी द्रविड़ देश को भक्ति की जन्मभूमि कहा गया है और लिखा है कि यह भक्ति कर्नाटक में युवती बनी, महाराष्ट्र और गुजरात में से बुढ़ापे ने आ घेरा, मार्ग में चलते चलते उसके ज्ञान और वैराग्य नाम के दोनों पुत्रों का निधन हो गया, परंतु वृंदावन में आते ही यह भक्ति पुनः युवती हो गई। भागवत महात्म्य के इस उल्लेख से दक्षिण भारत भक्ति भावना का उद्गम स्थान माना जा सकता है। इस उल्लेख से यह भी सिद्ध होता है कि भक्ति दक्षिण से चलकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में होती हुई उत्तराखंड के वृंदावन प्रदेश में पहुंची, जहां पर इसका वही रूप दृष्टिगोचर हुआ जो दक्षिण कर्नाटक में था। महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेशों के निवासी भक्ति की ओर आकृष्ट न हो सके, ऐतिहासिक परंपरा के अनुशीलन से यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। दोनों प्रदेशों ने संत तुकाराम और नरसिंह मेहता जैसे वैष्णव भक्त उत्पन्न किए हैं। महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय तो भक्ति के क्षेत्र में अत्यंत ख्याति प्राप्त कर चुका है। गुजरात आज भी पुष्टि मार्गी भक्तों का केंद्र बना हुआ है। अतः भागवत महात्म्य का यह उल्लेख सर्वांशतः सत्य नहीं है। इस संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इस महात्म्य के लिखे जाने के समय भक्ति इन प्रांतों में अपनी गरिमामयी अवस्था में विद्यमान नहीं थी। आलवार दक्षिण के अत्यंत प्राचीन वैष्णव संत है, जिनका समय 200 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक है। इनमें सरो योगिन, पोयगेई आलवार, भूत या पूत योगिन, भूतत्त आलवार, महायोगिन तेय आलवार और भक्तिसार तिरुम ऋषय पिरान सबसे प्राचीन है। नाम आलवार, षटकोप, मधुकवि आलवार, कुलशेखर पेरुमाल, विष्णु तित्तम, तेरिय आलवार और गोदा अंदाल उनके पश्चात हुए। भक्तांग्री रेणु, टोंडर आडिपोडीय आलवार, योगी वाह तिरुपान आलवार और परकाल तिरुमंगई आलवार सबसे अंत में हुए। आलवारों की परंपरा प्रारंभिक आलवारों को ईसा से 4203 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ मानती है। इस गणना से अंतिम आलवार ईसा से 2700 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए होंगे। आधुनिक विद्वान अंतिम आलवारों को 8वीं शताब्दी के लगभग का मानते हैं। गुरु परंपरा पर लिखे हुए विभिन्न ग्रंथों से इस काल गणना का निश्चय किया जा सकता है। गुरु परंपरा के अनुसार भूतत्व, पोयगेई और पेय आलवार क्रमशः विष्णु के गदा, शंख और नंदक के अवतार हैं। तेरुम ऋषय पिरान विष्णु के चक्र का अवतार है। नाम आलवार विश्वक्सेन के अवतार तथा कुलशेखर पेरुमाल विष्णु की कौस्तुभ मणि के अवतार है। पेरिया, टोंडर, अडिपोडीय और तिरुमंगई क्रमशः गरुड़, वनमाला और शारंग के अवतार है। वल्लभ, हरिदास, हित, हरिवंश आदि के संप्रदायों में भी इसी से मिलती जुलती अवतार परंपरा सुरक्षित है। आलवारों में अंतिम तिरुपाण है। पेरिय आलवार की दत्तक पुत्री अंदाल और नाम आलवार के शिष्य श्री मधुर कवि भी आलवार भगवत भक्त माने जाते हैं। ये सब तमिल प्रदेश से संबंध रखते हैं। तमिल का अर्थ है प्रभु प्रेम में मग्न भक्त। आलवार शब्द का भी ऐसा ही आध्यात्मिक अर्थ है। जो ईश्वर ज्ञान के मूल तत्व तक पहुंच चुका है और उसके ध्यान में मग्न रहता है वही आलवार है। इन आलवारों में 7 ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय, 2 शूद्र और 1 किसी निम्न वर्ग का था। गुरु परंपराओं में आलवारों की जीवन घटनाएं तथा विचित्र जन्म तिथियां दी हुई हैं। इनके अतिरिक्त गरुड़ वाहन पंडित का दिव्य सूर्य चरित ग्रंथ रामानुज के समय में लिखा गया। दिव्य सूर्य चरित के आधार पर मणिप्रवाल शैली, जिसमें संस्कृत तथा तमिल दोनों का मिश्रण है, प्रचलित हुई। इसमें पिम्ब अलगीय पेरुमाल जीयर ने गुरु परम्परा प्रभावम ग्रंथ का निर्माण किया। आम्बिलई कंडाडई यप्पन ने तमिल में पेरिय तिरुमुडीय अड ईवु ग्रंथ लिखा। मणवाड मामुनी ने तमिल में उपदेश रत्न मालई और पिल्लई लोकाचार्य ने यतीन्द्र प्रवण प्रभावम लिखा। आलवारों के विषय में कुछ जानकारी उनकी रचनाओं के संग्रह नालायर दिव्य प्रबंधम से भी प्राप्त हो सकती है। दिव्य प्रबंधम और नाम आलवार रचित तिरुवाय मोरी पर कुछ टीकाएं भी लिखी गई हैं। इनके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त कुछ शिलालेख तथा ताम्र पत्र भी अलवारों के संबंध में ज्ञातव्य सामग्री प्रदान करते हैं। मणवाल मामुनि ने यतीन्द्र प्रमण प्रभावम में लिखा है कि प्रारंभिक अलवार त्रेय भूतत्व पोयगेय और तिरुम ऋषय पिरान पल्लवों के समय में थे, जो चौथी शताब्दी ईस्वी में कांची आए। नरसिंह वर्मा प्रथम ने सातवीं शताब्दी में ममलई नगर को बसाया। यह नगर भूतत्व की जन्मभूमि मानी जाती है, अतः भूतत्व सातवीं शताब्दी से पूर्व के नहीं हो सकते। तिरुमंगई अलवार ने कांची के वैष्णव मंदिर का यशोगान किया है, जिसे परमेश्वर वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अतः अलवारों का युग आठवीं शताब्दी ईस्वी के लगभग हुआ जान पड़ता है। इन्हीं दिनों के आसपास चोल तथा पांड्य प्रदेशों में वैष्णव भक्ति भावना का प्रसार हुआ था। आचार्य शंकर के प्रचार का भी यही युग था। नाम अलवार काडी का पुत्र था और पांड्यों के समय में एक उच्च पदाधिकारी था। उसी का नाम काडी मार्डन परांकुश और षटकोप था। उसका शिष्य मधुर कवि अलवार था और वह तिरुक्कुर गुर में उत्पन्न हुआ था। मधुरा में दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक पर कली संवत 3871 खुदा हुआ है। उस समय परांतक राजा राज्य करता था। उसका उत्तर मंत्री माल का पुत्र था। माल को ही मधुर कवि अलवार कहा जाता है। दूसरा शिलालेख मालन जदयन राजा के समय का है। कली संवत 3871 ईस्वी 770 में पड़ता है। इसी वर्ष के आसपास परांतक पांडे राजगद्दी पर बैठा। उसके पिता परांकुश की मृत्यु 770 ईस्वी के लगभग हो चुकी थी। माणंकारी उत्तर मंत्री के रूप में बना रहा। नाम अलवार का दूसरा नाम काली मालन सूचित करता है कि उसका पिता काली था। गुरु परंपरा में दिए वृत्तांतों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः नाम अलवार और मधुर कवि अलवार आठवीं शताब्दी के अंत में विद्यमान रहे होंगे। कुल शेखर पेरुमाल का समय भी नवी शताब्दी का प्रथमार्ध प्रतीत होता है। पेरिय अलवार और उसकी दत्तक पुत्री अंदाल दोनों श्री वल्लभ देव के समकालीन रहे होंगे, जिनका समय नवी शताब्दी का मध्य माना जाता है। तिरुमंगई अलवार ने पल्लव मल्ल की युद्ध दुंदुभी का उल्लेख किया है। इसने 717 से 779 ईस्वी तक राज्य किया था। टोंडर अडिपोडी अलवार और तिरुपान अलवार तिरुमंगई अलवार के समकालीन है, अतः ये इस युग से पहले के नहीं हो सकते। भंडारकर के मत से जब वैष्णव अलवार और शैव संत नामार बौद्ध तथा जैनों के संघर्ष में आए, उस समय अलवारों को अपने उत्थान का विशेष अवसर मिला होगा। संभव है ईसा की प्रथम शताब्दी में भी वैष्णव अलवार तमिल प्रदेश में रहे हों। नालाइर दिव्य प्रबंधम में 4000 पद्य हैं। यह रचना संग्रह रामानुज नाथ मुनि के समय में संपादित हुआ था। इसका एक भाग रामानुज के शिष्य गुरुत्तम का बनाया हुआ है। इसमें अलवारों का जो क्रम वर्णित है वह गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त क्रम से भिन्न है। इसमें नाम अलवार का नाम नहीं है। रामानुज के एक शिष्य पिल्लान ने नाम अलवार द्वारा रचित तिरुवाय मोड़ी पर टीका लिखी है, जिसके एक पद्य में उसने सब अलवारों के नाम लिखे हैं, केवल अंदाल का नाम उसमें नहीं है। यह पद्य इस प्रकार है। भूतम सरस्य महदान वयभट्ट नाथ श्री भक्ति सार कुल शेखर योगी वाहन भक्तांग्री रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। कुलशेखर ने स्वरचित मुकुंद माला में अपने को कोल्ली यूरईयूर चोल राजधानी पांड्य राजधानी कुडल मदुरा और कांगू का राजा लिखा है। त्रावणकोर का निवासी होने से यह पांड्य और चोल दोनों देशों की राजधानी का अधिपति बन गया। 900 ईस्वी के पश्चात चोल राजा परांतक का प्रभुत्व फैल गया और उसने यूरईयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। अतः कुलशेखर इसके पश्चात का नहीं हो सकता। अलवारों की रचनाओं में विष्णु के प्रति अत्यंत गंभीर श्रद्धा सम्मिलित प्रेम प्रकट हुआ है। यह प्रेम परवर्ती प्रपत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत का आधार है। अलवार भक्तों के पश्चात अर्घीय अर्थात आचार्य आते हैं, जिन्होंने अलवारों की रचनाओं में निहित दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की। पोयगेही भूतत्व और पेय ने तुरुवंतादि ग्रंथ के 3 विभागों का निर्माण किया है। प्रत्येक विभाग में 100 पद्य हैं। नामालवार शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ था। इसकी रचना सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। इसने 100 पद्यों में तिरुवृत्तम, 7 पद्यों में तिरुवाशीरियम, 87 पद्यों में तिरुवंतादि और 1102 पद्यों में तिरुवायमोडी ग्रंथ लिखे हैं। यह सदैव ध्यान में मग्न रहता था। इसके शिष्य मधुर कवि ने इसे विष्णु का अवतार माना है। कुलशेखर राम का भक्त था। इसके मुख्य ग्रंथ का नाम पेरुमाल तिरुमोडी है। अंदाल कृष्ण की भक्त थी और अपने को गोपी समझती थी। देवदासी प्रथा के अनुसार वश्री रंगम के देवता रंगनाथ को समर्पित की गई थी और उन्हीं को अपना पति समझती थी। उसके मुख्य ग्रंथ तिरुपावई और नच्छियार हैं। नाल आयर दिव्य प्रबंधम जिसमें अलवारू की रचनाएं संग्रहित हैं, तमिल प्रदेश में अत्यंत पवित्र ग्रंथ माना जाता है और वेद के समकक्ष रखा जाता है। इसके पद्य मंदिर में तथा विवाह आदि के अवसरों पर घर में भी गाए जाते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ आदि अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग होता है। अलवारू की भक्ति का स्वरूप। अभिराम वराचार्य ने त्रिमिडोपनिषद तात्पर्य नामक ग्रंथ में अलवार भक्तों की रचनाओं का सार संग्रहित किया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि षटकोप उच्च कोटि के भक्त थे। ईश्वर के प्रति उनके हृदय में जो श्रद्धा और भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही थी, वह वहीं तक सीमित न रहकर वाणी द्वारा पद्यों में फूट फूट कर बहने लगी, जिसे पढ़कर या सुनकर पीड़ित प्राणियों को अपार सांत्वना प्राप्त हुई। इन पद्यों में षटकोप ने पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष अपने पुरुषत्व और सामर्थ्य को समर्पित कर दिया है। इनका मत है कि जैसे स्त्री अपने पति के आश्रम में रहती है, वैसे ही भक्त को भगवान के आश्रम में रहना चाहिए। अपनी प्रथम रचना में इन्होंने भगवान से आवागमन के चक्र को समाप्त कर देने की प्रार्थना की है। द्वितीय रचना में इन्होंने प्रभु के गुणों का गान किया है। तृतीय रचना में प्रभु प्राप्ति रूपी आनंद की आकांक्षा प्रकट की है और चतुर्थ रचना में इनकी विरह वेदना जन्य घोर निराशा अभिव्यक्त हुई है। षटकोप की भक्ति दास्य भाव की है। लौकिक लाभ को वे प्रभु प्रपत्ति के समक्ष तुच्छ समझते हैं और आत्मनिवेदन द्वारा अपने पापों को प्रभु के आगे खोलकर रख देते हैं। उनकी मान्यता है कि भाव की तुलना में पार्थिव पदार्थों द्वारा प्रभु की पूजा करना निकृष्टतर है। भक्त के हृदय में प्रभु के लिए विशुद्ध श्रद्धा और प्रेम की भावना ओतप्रोत होनी चाहिए। प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भक्त को केवल अपने सर्वस्व का समर्पण प्रभु के लिए कर देना चाहिए। तत्पश्चात उसे किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रभु का प्रेम अहेतुक है और वह भक्त को अनायास प्राप्त है। आचार्य रामानुज का मत इस विषय में अलवारों से भिन्न है। वे प्रभु प्रेम को निर्हेतुक और सहेतुक दो प्रकार का मानते हैं। रामानुज प्रपत्ति अर्थात सर्वात्मना समर्पण की भावना को प्रधानता देते हैं और कहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह और उनका प्रेम प्रपत्ति द्वारा ही संभव है। भक्त जब तक अपने आप को प्रभु की शरण में समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसे प्रभु प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। भक्त की यह प्रपत्ति भावना उपाय शून्यता भी कहलाती है। प्रभु की शरण जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय इस अवस्था में लाभदायक नहीं माना जाता, परंतु प्रपत्ति के साथ जो लोक संग्रह का कार्य भक्त को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, उससे भी भक्त प्रभु प्रेम का अधिकारी बन जाता है। प्रपत्ति से प्राप्त प्रेम निर्हेतुक और लोक संग्रह कार्य से प्राप्त प्रभु प्रेम सहेतुक कहलाता है। निम्नांकित पंक्तियां षटकोप के सिद्धांत को भक्ति के क्षेत्र में स्पष्ट कर रही हैं। मोक्षादरम स्फुटम वेक्ष्य मुनिर मुकुंदे, मोक्षम प्रदातुम सदृक्ष फलम प्रवित्ते, आत्मेष्ट मत्स्य पदकिंकर सैक रूपम, मोक्षाख्य वस्तु नवमे निर्णायि तेना, सर्वम जगत समवलोक्य विभो शरीरम तद्वाचिनश्च सकलान अपि शब्द राशिम, तम भूत भौतिक मुखान कथयन पदार्थान दास्यम चकार वचसैव मुनिश चतुर्थे। षटकोप मोक्ष की अपेक्षा प्रभु सामीप्य को श्रेष्ठता समझते हैं। उनकी दृष्टि में दास्य भाव से प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष है। निखिल जगत और उसकी वस्तुओं अर्थात दृश्यों का वे भगवान के शरीर रूप में अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं कर सकते, उनके लिए वे कृष्ण चरित तथा प्रतिमाओं के ध्यान को आवश्यक समझते हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवों में आस्था रखना उनके मतानुसार अनुचित है। उनकी रचनाओं में प्रभु के वियोग की तीव्र अनुभूति प्रकट हुई है। अपने समस्त अंतःकरण को समेटकर वे इन्हीं नेत्रों से भगवान के दिव्य दर्शन करने के अभिलाषी हैं। इसी के साथ वे यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रभु का दर्शन बाहर की आंखों से नहीं, श्रद्धा सम्मिलित अंतःकरण की आंखों से ही होता है। षटकोप अपने को प्रभु की पत्नी के रूप में बार बार प्रस्तुत करते हैं। कुंभकोणम के मंदिर में प्रतिष्ठित श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा का वे बहुत दिनों तक पूजन करते रहे और प्रभु का प्रसाद पाकर उन्होंने अपने को धन्य समझा। परिणाम स्वरूप सांसारिक जीवन में उन्हें कुछ भी रुचि न रही। कुलशेखर की भक्ति भी अनन्य भाव की है। तिरुमल तिरुमोड़ी के छंद 5 में वे लिखते हैं, यद्यपि अग्नि अपनी समस्त ऊष्मा के साथ प्रकट होती है, फिर भी कमल को विकसित करने में वह असमर्थ है। कमल तो प्रभी प्रफुल्लित होगा जब उसे प्रखर किरणों वाले सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। इसी प्रकार मेरा हृदय आपके प्रभु के चरण कमलों के प्रेम के बिना अन्य किसी भी साधन से द्रवित नहीं हो सकता। जैसे निखिल झरनों और सरिताओं का जल दौड़ लगाता हुआ अंत में समुद्र में विश्राम पाता है, वैसे ही मेरा हृदय हे घनश्याम, आपके अंदर ही शांति प्राप्त कर सकता है। अंदाल का नाम दाक्षिणात्य भक्तों के संबंध में श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है। जैसे कृष्ण अपनी गायों के पीछे पीछे वन में विहार करते थे, उसी प्रकार अंदाल ने अपने को गोपी के रूप में कृष्ण की गायों के पीछे वन में भेजा है। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा कही जाती हैं। अंदाल भी ऐसी ही भगवान कृष्ण के प्रेम की आदर्श पुजारिन है। जैसे अंदाल ने अपने को गोपी के रूप में अनुभव किया है, वैसे ही पेरी आलवार ने यशोदा बनकर कृष्ण की बाल लीलाओं में अपने को मग्न कर दिया है। आलवार भक्त प्रभु के जिस प्रेम का वर्णन करते हैं, वह क्षणिक प्रेम नहीं है। यह प्रेम सतत नित्य रूप में रहने वाला है। जब यह प्रेम सघन एवं सांद्र रूप धारण करता है, तब उसकी संज्ञा अनिर्वचनीय हो जाती है। इस प्रकार प्रेम की अवस्था में भक्त भी मूक और नीरव बन जाता है। यह प्रेम तीन अवस्थाएं प्राप्त करता है, स्मरण, मूर्छा और अनंत विराम। स्मरण में प्रभु की कृपा से प्राप्त आनंद की अवस्था का भक्त के हृदय में बार बार जागरण होता रहता है। मूर्छा में भक्त उस आनंद की स्मृति से आत्मविभोर हो उठता है। अनंत विराम में उसकी अवस्था एकदम स्तब्ध हो जाती है। उस समय बाह्य रूप से उसमें और जड़ ठूट में विशेष अंतर नहीं रहता। दैवी संपदा को उत्साह पूर्वक अपनाने वाले तथा अध्यात्म सिंधु का गंभीर अवगाहन करने वाले अलवारों को दाक्षिणात्यों ने सम्मान भी उन्हीं के अनुरूप प्रदान किया। उन्होंने अलवारों की मूर्तियों को दक्षिण के वैष्णव मंदिरों में स्थापित किया, जहां इनकी पूजा होती है। इनके बनाए हुए पद्य गाए जाते हैं और इनकी जीवन घटनाएं नाटक के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। अलवारों की भक्ति में दास्य, वात्सल्य तथा कांता तीन भावों की प्रधानता है। भगवत भक्तों की सेवा को वे भगवान की ही सेवा का एक अंग मानते हैं और परमेश्वर को वासुदेव, नारायण, भगवान, राम, कृष्ण आदि नामों से पुकारते हैं। आचार्य दक्षिण में अलवार वैष्णव भक्तों के अतिरिक्त कुछ आचार्य भी हुए हैं। अलवारों की रचनाओं में प्रेम और श्रद्धा की भावनाओं का अतिरेक है, जिन्हें वे नारायण, विष्णु, राम या कृष्ण के प्रति प्रकट करते हैं। आचार्यों का कार्य विवाद तथा शास्त्रार्थ द्वारा विरोधी पक्ष का निराकरण और अपने मत तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। आचार्य मीमांसा तथा वैदिक कर्मकांड के प्रकांड ज्ञाता थे। इनका समय 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। इन्होंने अलवारों के तमिल भाषा में लिखित भक्ति परक पद, जिन्हें तमिल वेद कहा जाता है, और वास्तविक वेद दोनों का गंभीर अध्ययन किया था। कर्म एवं भक्ति, लोक तथा वेद दोनों में सामंजस्य स्थापित करके इन्होंने भक्ति मार्ग को विप्र, शूद्र, स्त्री, पुरुष सब के लिए उन्मुक्त कर दिया। आचार्यों में सर्वप्रथम नाथ या रंगनाथ मुनि आते हैं, जिन्होंने लुप्त हुए भक्ति भरित तमिल वेद का पुनरुद्धार किया था। ये परांकुश मुनि के शिष्य थे। इन्होंने श्री रंगम के प्रसिद्ध मंदिर में तमिल वेद के गायन तथा अध्यापन की व्यवस्था की। यामुनाचार्य या यामुन मुनि इनके शिष्य थे। कुछ विद्वान यमुनाचार्य को नाथ मुनि का पौत्र तथा राम मिश्र का शिष्य कहते हैं। यमुनाचार्य अध्यात्म विद्या में पारंगत थे। इनका तमिल नाम आल बंदार है। इनके पश्चात आचार्य रामानुज हुए, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर श्री भाष्य लिखा। शंकर के अद्वैत मत को मान लेने पर भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अद्वैतवादियों के लिए भक्ति की प्रतिष्ठा करना कठिन कार्य है। रामानुज ने इसी हेतु श्री भाष्य द्वारा अद्वैत मत का खंडन किया। इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है और भक्ति मार्ग का सहायक है। इसके आधार पर भक्ति पक्ष की प्रतिष्ठा सुगमता से हो जाती है। आचार्य रामानुज यमुनाचार्य के संबंधी थे। इनका जन्म 1017 ईस्वी के आसपास तुरुंगकुदूर में हुआ था, जो मद्रास के पास है। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। रामानुज सर्वप्रथम कांजीवरम में यादव प्रकाश के शिष्य बनकर रहे। यादव प्रकाश अद्वैतवादी थे, परंतु रामानुज की रुचि वैष्णव धर्म की ओर थी, अतः इन्हें वहां से हटना पड़ा। रामानुज ने अलवारों के प्रबंधों को पढ़ा और वे यमुनाचार्य के शिष्य बनकर कृष्णापल्ली के समीप श्री रंगम में रहने लगे। इन्होंने उत्तरापद की तीर्थ यात्रा भी की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें चोल प्रदेश के राजा से कुछ कष्ट भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वे उसके कहने से वैष्णव धर्म का परित्याग एवं शैव धर्म को स्वीकार न कर सके। इसी कारण वे उसके राज्य प्रदेश को छोड़कर मैसूर राज्य में 1096 ईस्वी में चले आए। वहां रहकर रामानुज ने विट्ठल देव को, जो राजा बल्लाल के भाई थे, वैष्णव धर्म में दीक्षित किया और उनका नाम विष्णुवर्धन रखा। रामानुज की मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। इनके लिखे हुए ग्रंथ इस प्रकार हैं: वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप और ब्रह्म सूत्र तथा गीता के भाष्य। रामानुज के मतानुसार चित्त जीव भोक्ता है और अचित जगत भोग्य है। परमेश्वर इन दोनों का अंतर्यामी है। तीनों नित्य हैं, परंतु प्रथम दो स्वतः स्वतंत्र होते हुए भी ईश्वर के अधीन हैं। वे उससे भिन्न तो नहीं कहे जा सकते, परंतु उसके शरीर अवश्य कहे जा सकते हैं। क्योंकि ईश्वर दोनों में व्यापक है। रामानुज किसी भी पदार्थ को निर्गुण नहीं मानते। संसार के सभी पदार्थ गुण विशिष्ट हैं। ईश्वर सदैव सगुण है। वह प्राकृतिक गुणों से रहित होते हुए भी अपने गुणों से अमित कल्याण गुण गुणाकर अनंत ज्ञान आनंद स्वरूप और संसार की सृष्टि स्थिति एवं संहृति का मूल कारण है। जब हम निर्गुण ब्रह्म का नाम लेते हैं उस समय निर्गुण का अर्थ प्राकृत गुणों से विहीन होता है। निर्विकल्प समाधि में भी जीव सविशेष वस्तु का ही प्रत्यक्ष करता है। ईश्वर सजातीय एवं विजातीय दोनों भेदों में से शून्य है। चित्त जीव भी अचित जगत से सर्वथा भिन्न है। तीनों में अप्रत्यक्ष सिद्ध संबंध है। बाह्य रूप से तीनों में समवाय संबंध है, परंतु आंतरिक रूप से अप्रत्यक्ष सिद्ध संबंध है। जो संबंध जीव का शरीर के साथ है वही ईश्वर का चित्त और अचित के साथ है। ईश्वर चित्त एवं अचित का आश्रय नियमन करता तथा उन्हें कार्य में प्रवृत्त करने वाला है। नियामक होने से ही ईश्वर को विशेष तथा नियम में होने से जीव और जगत को विशेषण कहा जाता है। विशेष की सिद्धि पृथक रूप से भी की जा सकती है, परंतु विशेषण सदैव विशेष के साथ ही रहेगा। रामानुज त्रिविध तत्वों की स्थिति स्वीकार करते हैं और उनमें अंगांगी संबंध को मानते हैं। यही विशिष्टता द्वैत मत है। इस मत के अनुसार भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ईश्वर पांच रूप धारण करता है। पर रूप व्यूह जिसमें पांच रात्रों का चतुर्व्यूह आता है, विभव जिसमें भुक्ति मुक्ति प्रत 39 अवतारों की गणना है, अंतर्यामी जो सबके हृत कमल में बैठकर सबको व्यापार में प्रवृत्त करता है, और अर्चावतार मूर्तियाँ। जीव को शेष और ईश्वर को शेषी कहते हैं। दोनों में देह देही अथवा स्फुलिंग और अग्नि का संबंध है। अचित के तीन भेद हैं: शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और सत्व शून्य। सत्व शून्य काल है, प्राकृत सृष्टि का उपादान मिश्रित तत्व है, इसी को माया अविद्या या प्रकृति कहते हैं। शुद्ध सत्व नित्य ज्ञानानंद का जनक और अनंत तेजो रूप है, इसी से मुक्त पुरुषों के शरीर और स्वर्ग की रचना होती है। भगवान के व्यूह रूप इसी शुद्ध सत्व से बनते हैं। मुक्त दशा में भी जीव का अहम भाव रहता है। शुद्ध सत्व से निर्मित नित्य विभूति को परम पद, परम व्योम, वैकुंठ, अयोध्या आदि नामों से पुकारा जाता है। रामानुज के मत में भगवान की कृपा ही उनकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। प्रपत्ति या शरणागति कृपा के लिए साधन है, गुरु भी एक साधन है। विशिष्टा द्वैत मत में भक्ति अंतिम सोपान है जिस पर चढ़कर जीव प्रभु को प्राप्त करता है। भक्ति के पूर्व ज्ञान योग और उससे भी पूर्व कर्म योग की स्थिति है। कर्म द्वारा हृदय शुद्ध होता है और वह ज्ञान योग की ओर ले जाता है। ज्ञान योग से प्रकृति का अनुभव होता है और उस अनुभव से जीव अपने को प्रकृति से पृथक समझने लगता है। जीव का आत्मज्ञान ही उसे भगवत भक्ति की ओर आकर्षित करता है। भक्ति योग में अष्टांग योग की साधना भी सम्मिलित है। भक्ति योग की प्राप्ति के लिए रामानुज ने 7 साधनों का वर्णन किया है। 1. पवित्र अन्न के सेवन द्वारा शरीर की शुद्धि। 2. सदाचार। 3. अनवरत अभ्यास। 4. पंच महायज्ञों का संपादन। 5. सत्य, दया, दान, अहिंसा आदि का पालन। 6. आशावादिता और 7. अहंकार का त्याग। इन साधनों द्वारा भक्ति भावना सिद्ध होती है। रामानुज की भक्ति में विष्णु और नारायण नामों की प्रधानता है। व्यूहों के साथ वासुदेव नाम भी आ जाता है, पर राम कृष्ण और विशेष रूप से राधा तथा गोपाल कृष्ण नाम नहीं आते। रामानुज भक्ति भावना में परमेश्वर के सतत ध्यान पर बल देते हैं, जो उपासना के अंतर्गत आता है और जिसमें वह असीम प्रेम भाव या माधुर्य भाव की भक्ति नहीं है, जो चैतन्य या वल्लभ के भक्ति मार्ग में आगे चलकर दिखाएगी। 13वीं शताब्दी के अंत में रामानुज संप्रदाय, जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है, दो दो दलों में विभक्त हो गया, तैंकले और बड़कलय। तैंकले तमिल वेद को ही सब कुछ मानते थे। बड़कलय तमिल वेद और वेदादि संस्कृत ग्रंथ दोनों को प्रामाणिक मानते थे। दोनों दलों में सिद्धांत संबंधी कई भेद हैं। तैंकले शुद्ध सत्व को जड़ और बड़कलय इसे चित्त मानते हैं। तैंकले प्रपत्ति को ही एकमात्र मोक्ष उपाय मानते हैं। बटकलय प्रपत्ति के लिए भी कर्म को आवश्यक मानते हैं। दोनों के मतों को मारजार किशोर और कपी किशोर का दृष्टांत स्पष्ट कर देता है। टैंकलय मत के प्रतिष्ठापक श्री लोकाचार्य 13वीं शताब्दी में हुए हैं। बटकलय मत के संवर्धक वेदांताचार्य श्री वेंकट नाथ वेदांत देशिक का जीवन काल 1269 से 1369 ईस्वी तक माना जाता है। वेदांत देशिक ने हनुमान को गुरु तत्व रूप में स्वीकार किया है। आचार्य रामानुज द्वारा प्रवर्तित श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रधान कार्यक्षेत्र आंध्र तथा तमिल प्रांत रहा है। मध्व भट्ट। श्री नारायण ने मध्वाचार्य विजय और मणिमंजरी में मध्व भट्ट का जीवन चरित्र लिखा है, जिसके अनुसार मध्व भट्ट तुलु देश के बेलीग्राम में 1199 ईस्वी की विजयादशमी को उत्पन्न हुए थे। इनकी माता का नाम वेदवती और पिता का नाम मध्य गेह भट्ट था। बाल्यावस्था में इनका नाम वासुदेव था। संन्यास लेने पर आचार्य मध्व स्वामी आनंद तीर्थ के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी मृत्यु 1303 ईस्वी में मानी जाती है। माध्व मत वालों का प्रधान कार्य क्षेत्र कर्नाटक तथा दक्षिणी महाराष्ट्र प्रांत रहा है। आचार्य मध्व के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। माध्व मतानुयायी ब्रह्मा को अपने संप्रदाय का मूल प्रवर्तक मानते हैं। पद्म पुराण के नीचे लिखे श्लोकों में श्री कृष्ण को समस्त वैष्णव संप्रदायों का परम आचार्य कहा गया है। श्री कृष्ण ने अपने 4 शिष्यों को वैष्णव तत्व का उपदेश दिया था, जिनके नाम श्री ब्रह्मा, रुद्र और सनक हैं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मतः अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा श्रुति पावना चत्वारस्य कलौ भाव्या हृत्फले पुरुषोत्तमान। प्रमेय रत्नावली का नीचे लिखा श्लोक भी इसी मत की पुष्टि करता है। रामानुजम श्री श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुख श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्भादित्यम चतुसन। इसी आधार पर रामानुज संप्रदाय को श्री संप्रदाय, माध्व संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी के संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क के संप्रदाय को सनक संप्रदाय कहते हैं। श्री संप्रदाय में श्री का अर्थ सीता जी है। विष्णु स्वामी के संप्रदाय का संवर्धन करने वाले आचार्य वल्लभ हुए, जिन्होंने इन्हीं के सिद्धांतों को अपनाकर पुष्टि मार्ग की स्थापना की। माधव मत का बंगाल के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय पर विशेष प्रभाव पड़ा है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने स्वरचित प्रमेय रत्नावली में श्री चैतन्य को मध्व भट्ट की शिष्य परंपरा में 18वीं पीढ़ी पर रखा है। आचार्य मध्व ने उदीपी में कृष्ण मूर्ति की स्थापना की थी। यह स्थान माध्व मत वालों का तीर्थ स्थान बन गया है। वैष्णव सहज स्वभाव से ही अहिंसक होते हैं। दक्षिण में एक वर्ग यज्ञों के अंदर पशु हिंसा को विहित समझता था। वैष्णवाचार्य मध्व भट्ट को यह कार्य सह्य नहीं हुआ, अतः उन्होंने यज्ञ से पशु हिंसा को हटाकर आटे के बने हुए पशु की बलि देने का विधान अपने अनुयायियों के लिए निश्चित कर दिया। श्री वैष्णव संप्रदाय की भांति शंख चक्रादि की तप्त मुद्रा धारण करने का नियम माध्व मतावलंबियों के भी अंतर्गत है। आचार्य मध्व अपने ग्रंथों में न वासुदेव का नाम लेते हैं और न उनके 4 व्यूहों का। वे भगवान को विष्णु कहकर पुकारते हैं। राम और कृष्ण अवतारों के नाम आते हैं, परंतु राधा, गोपियां तथा गोपाल कृष्ण की लीलाएं उनके ग्रंथों में स्थान नहीं पाती। आचार्य मध्व के नाम से कई ग्रंथों की प्रसिद्धि है, जिनमें गीता, ब्रह्मसूत्र और दशोपनिषदों के भाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, गीता तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय आदि प्रमुख समझे जाते हैं। मायावाद का खंडन इस मत की विशेषता रही है। माध्व संप्रदाय वालों ने अद्वैतवादियों पर घोर आक्रमण किए हैं और उनके विरोध में अनेक ग्रंथों की रचना की है। माध्व मत में नीचे लिखे सिद्धांत विशेष रूप से मान्य हैं। 1. हरि से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है, हरि ही विष्णु है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बंध और मोक्ष के कारण है। 2. चेतन के 2 भेद हैं, जीव और ईश्वर। जीव हरि के अनुचर हैं, वे स्वल्प शक्ति और स्वल्प ज्ञान वाले हैं। जीव आपस में कर्म संपत्ति की विभिन्नता के कारण उच्चावच स्थितियों में सदैव वर्तमान रहते हैं। मुक्तावस्था में भी वे एक समान आनंद का उपभोग नहीं करते। 3. जगत सत्य है। जब ईश्वर सत्य संकल्प है, तब उसकी कोई भी कल्पना, कोई भी रचना मिथ्या नहीं हो सकती। 4. ईश्वर जीव और प्रकृति में तात्विक भेद है। यह भेद 5 प्रकार का है। ईश्वर का जीव से, जीव का ईश्वर से, ईश्वर का जीव से, जीव का जीव से, ईश्वर का जड़ प्रकृति से, जीव का जड़ से और जड़ का जड़ से। 5. मुक्ति नैज सुखानुभूति का नाम है। इसमें दुख नाश के अनंतर आनंद का उदय होता है। मुक्ति 4 प्रकार की है, कर्मक्षय, उत्क्रांति और चिरादि मार्ग और भोग। भोग भी 4 प्रकार का है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य। सायुज्य मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है। 6. मुक्ति का सर्वोच्च साधन अमला भक्ति है। यह भक्ति अनन्य और अहेतुकी होनी चाहिए। 7. वेदों के द्वारा वेद्य अर्थात जानने योग्य हरि ही हैं। वेदों के नाना देवता उसी हरि के नाना रूप हैं। वेद आदि मध्य और अंत में भगवान का ही गान गाता है। माध्व मतानुयायी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाणों के आधार पर अपने प्रमेयों का प्रतिपादन करते हैं। निम्बार्क। निम्बार्क तैलंग ब्राह्मण थे और निम्ब के निवासी थे। निम्ब बिलारी जिले का निम्बापुर प्रतीत होता है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है। जन्म संवत के संबंध में संदेह है, परंतु यह संवत रामानुज के पश्चात ही पढ़ना चाहिए। भंडारकर अपने ग्रंथ वैष्णविज्म, शैविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम्स के पृष्ठ 63 की पाद टिप्पणी में निम्बार्क का जन्म संवत 1162 ईस्वी लिखते हैं। इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सरस्वती था। कुछ विद्वान दक्षिण देश में गोदावरी के तट पर वैदूर्य पत्तन के निकट अरुणाश्रम में श्री अरुण मुनि की पत्नी जयंती देवी के गर्भ से इनका जन्म मानते हैं। कल्याण संतवाणी अंक 1955। श्री रूपक रूप कला जी भक्तमाल के भक्ति सुधा स्वाद तिलक पृष्ठ 266 पर इन्हें गोदावरी गंगा के तट पर स्थित मुंगेर ग्राम का निवासी और महाराष्ट्र ब्राह्मण लिखते हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व पृष्ठ 338 चतुर्थ खंड अध्याय 7 में श्लोक 69 से 85 तक निम्बादित्य के जीवन चरित्र का उल्लेख पाया जाता है। इसके अनुसार देवर्षि वर सेवित तैलंग देश में पवित्र सुदर्शन नाम के आश्रम में भृगुवंशी वेद वेदांग पारण अरुण नाम के ऋषि रूपधारी ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम जयंती था। इन्हीं दंपति के पुत्र निम्बादित्य थे जिनका जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा वृष राशि कृतिका नक्षत्र उच्चस्थ पंच ग्रह सूर्यावसान वेला तथा मेष लग्न में हुआ था। इन्होंने समग्र विश्व को वेद धर्म में नियोजित किया। एक दिन निम्बार्क के आश्रम में ब्रह्मा पहुँचे और कहने लगे, मैं भूखा हूँ, जब तक सूर्य व्योम में है तब तक मुझे भोजन करा दो। इधर वे भोजन करने बैठे उधर सूर्य अस्ताचल गामी हुए। यह देखकर निम्बार्क ने निम्ब वृक्ष के ऊपर अपने तेज से सुदर्शन तेज तत्व को स्थापित कर दिया। सूर्य के समान उस तेज को देखकर ब्रह्मा विस्मय में पड़ गए और निम्बार्क के तप से जो उस समय भिक्षु वेश धारण किए हुए बालक के रूप में थे संतुष्ट होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तभी से इनका नाम निम्बादित्य पड़ गया। प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका कवित्व संख्या 106 में इसी कथा की ओर संकेत किया है, पर वहाँ अतिथि ब्रह्मा नहीं एक दंडी स्वामी है। संप्रदाय वाले इन्हें विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। आचार्य निम्बार्क के लिखे हुए दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, वेदांत पारिजात सौरभ और सिद्धांत रत्न। प्रथम ग्रंथ ब्रह्म सूत्रों पर संक्षिप्त भाष्य के रूप में है। द्वितीय ग्रंथ का दूसरा नाम दश श्लोकी है। इनकी शिष्य परंपरा में श्रीनिवास हरि व्यास देव देवाचार्य सुंदर भट्ट केशव भट्ट आदि की गणना है। निम्बार्क द्वैतवादी है। दश श्लोकी का भाष्य करते हुए इनके शिष्य हरि व्यास देव लिखते हैं, जीव ब्रह्मणोर भेदे अपि वैलक्षण्य व्यवहारो अवतारव तारिणो रिव नित्यः तेन क्वापि वाक्य व्याकोपो भक्ति सिद्धिश्च न च धर्म सांकर्यम् घट कपालयोर गुण गुणिनोश्च सत्य भेदे तद दर्शनात्। अर्थात जीव और ब्रह्म में अभेद होते हुए भी दोनों का विलक्षण व्यवहार है। जैसे अवतार और अवतारी अथवा गुण और गुणी में अभेद होते हुए भी भेद है, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म एक होते हुए भी दो हैं। ब्रह्म निम्बार्क के मत में जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। मकड़ी के जाले की तरह सृष्टि ईश्वर से उद्भूत होती है। ईश्वर प्राकृत दोषों से रहित और ज्ञान बल आदि कल्याणकारी गुणों के निधान है। जीव संसारी दशा में भी करता है और मुक्त दशा में भी। यह अणु परिमाण वाला है। जीव सदैव ईश्वर के अधीन रहता है। जीव और ईश्वर का संबंध शक्ति और शक्तिमान तथा अंश और अंशी का है। अचित तत्व प्राकृत अप्राकृत और काल तीन प्रकार का है। प्राकृत तत्व त्रिगुणात्मक कारण रूप में नित्य तथा कार्य रूप में अनित्य है। अप्राकृत तत्व विशुद्ध तत्व है। इसी को आचार्य रामानुज के शुद्ध तत्व की भांति नित्य विभूति विष्णु पद परम व्योम परम पद ब्रह्मलोक आदि कहा जाता है। काल प्रभाव से पृथक रहने के कारण यह परिणाम आदि विकारों से शून्य है। काल जड़ तत्व का सहकारी तथा प्राकृत पदार्थों का नियामक है। यही भूत भविष्य तथा वर्तमान व्यवहारों का हेतु है। निम्बार्क के मत में भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्म है। जीव प्रपत्ति द्वारा भगवान के अनुग्रह का अधिकारी होता है। भगवत कृपा से ही आत्मा के अंदर भक्ति भाव का आविर्भाव होता है, जिससे भगवान के साक्षात्कार की सिद्धि होती है। दश श्लोकी की टीका करते हुए हरिव्यास जी लिखते हैं, नान्या गति कृष्ण पदार विंदा कृष्ण एव परो देव तम ध्यायेत तम रसेत तम भजेत तम यजेत ओम तत्सदिति। अर्थात भगवान कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। कृष्ण ही परम देव है, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। वही ओंकार है और वही सत है। निम्बार्क ने राधा की उपासना पर भी बल दिया है। दश श्लोकी में राधा की स्तुति करते हुए वे लिखते हैं, अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सौमगाम सखी सहस्त्रय परिसेविताम सदा स्मरेम देविम सकलेष्ट कामदाम। राधा कृष्ण की उपासना आचार्य निम्बार्क से ही प्रारंभ हुई। रामानुज ने भक्ति को ध्यान आदि का रूप प्रदान किया था, निम्बार्क ने पुनः भक्ति को उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया। रामानुज ने नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी, भू तथा लीला को प्रधानता दी थी। निम्बार्क ने राधा और कृष्ण को आराध्य बनाया। निम्बार्क की भक्ति भावना 5 प्रकार की है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और उज्ज्वल। उज्ज्वल रस के भक्त हैं गोपी तथा राधा। आचार्य वल्लभ और चैतन्य के संप्रदायों में भी उज्ज्वल रस को उत्कृष्ट माना गया है। श्रीमद् भागवत स्कंध 10 अध्याय 33 के श्लोक 30 और 37 के अनुसार श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां थी उतने ही अपने रूप बनाकर उनके साथ लीलामयी क्रीड़ा की। यह क्रीड़ा वैसी ही थी जैसी बालक की क्रीड़ा अपने प्रतिबिंब के साथ होती है। निम्बार्क ने राधा को स्वकीय और विवाहिता माना है, परंतु यह अवतार लीला के विषय में ही सत्य है। नित्य लीला में तो स्वकीय तथा परकीय का भेद ही नहीं रहता। निम्बार्क के मत में भक्ति के 5 भाव भक्त की रुचि पर अवलंबित हैं। माधुर्य भाव की उत्तमता का अर्थ अन्य भावों को हेय सिद्ध करना नहीं है। भक्त के हृदय का झुकाव जिस भाव की ओर हो वही उसे लाभ देता है। भक्ति क्षेत्र में प्रपत्ति अर्थात शरणागति परम आवश्यक है। निम्बार्क के मत से ही राधा वल्लभी तथा हरिदासी मतों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें राधा को कृष्ण से भी बढ़कर माना जाता है। हरिदास जी ने वृंदावन में सखी संप्रदाय की प्रतिष्ठा की और गोपी भाव की भक्ति का प्रचार किया। निम्बार्क तैलंग देश के कहे जाते हैं, परंतु वहाँ इनके मत का कुछ भी प्रचार नहीं है। इनके प्रचार का मुख्य क्षेत्र वृंदावन ही है। विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी के संबंध में अभी तक किसी निश्चित व्यक्तित्व का पता नहीं चला है। इनकी रचना सर्वज्ञ सूक्त का उपयोग श्रीधर स्वामी ने अपनी भागवती टीका में किया है। भागवत के टीकाकार श्रीधर 11वीं शताब्दी के हैं, अतः विष्णु स्वामी इनसे पूर्व के होने चाहिए। आचार्य वल्लभ को विष्णु स्वामी की उच्छिष्ट गद्दी का अधिकारी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के एक ग्रंथ संप्रदाय प्रदीप में विष्णु स्वामी को द्रविड़ देश के एक राजा के मंत्री का पुत्र माना गया है, जो वेदादि शास्त्रों में निष्णात तथा भक्ति योग की साधना करने वाला था। विष्णु स्वामी ने भक्ति मार्ग के प्रचार में भक्ति को मुक्ति से भी अधिक महत्व दिया और भक्ति के साधनों के रूप में वर्णाश्रम धर्म की कर्तव्य मर्यादा, अष्टांग योग की साधना तथा वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय को महत्ता प्रदान की। विष्णु स्वामी के पश्चात इनके पंथ के प्रचारकों में लगभग 700 आचार्यों की गणना की जाती है और महाराष्ट्र का बारकरी संप्रदाय विष्णु स्वामी के मत का ही रूपांतर माना जाता है। बारकरी संप्रदाय भागवत धर्म की ही एक शाखा है, जिसके अनुयायियों में ज्ञानदेव तथा नामदेव जैसे उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। कुछ विद्वान सारणाचार्य के गुरु विद्याशंकर जी का दूसरा नाम विष्णु स्वामी बताते हैं। कुछ हो इतना तो सिद्ध है कि आचार्य वल्लभ के पूर्वज विष्णु स्वामी के शिष्यों में से थे और आचार्य वल्लभ को इन्हीं की गद्दी प्राप्त हुई थी। विष्णु स्वामी का संप्रदाय रौद्र संप्रदाय कहलाता है। रुद्र अग्नि का रूप है, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। वायु पुराण अध्याय 25 श्लोक 21 में महादेव विष्णु से कहते हैं, अहम अग्निर् भवान सोमो भवान रात्रि रहम दिनम, अर्थात मैं अग्नि हूँ और आप सोम हैं। यह आश्चर्य की बात है कि अग्नि पुराण के भविष्योत्तर खंड में आचार्य वल्लभ को भी अग्नि रूप कहा गया है। अग्नि रूपो द्विजाचारी भविष्यामेह भूतले वल्लभो यग्नि रूपः स्याद् विठ्ठलः पुरुषोत्तमः। इससे इतना तो संकेत मिल ही जाता है कि आचार्य वल्लभ विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय से किसी न किसी रूप में संबद्ध थे और रुद्र अथवा अग्नि नाम से उन्हें प्रेम था। आचार्य वल्लभ के मत में श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं। वे अनन्य शक्तियों द्वारा अपनी आत्मा में अंतर रमण करने से आत्मा राम और बाह्य रमण की इच्छा से अपनी शक्तियों की बाह्य अभिव्यक्ति करने पर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनकी नित्य लीला व्यापी वैकुंठ में होती रहती है। गोलोक जिसका एक अंश है और जो विष्णु के वैकुंठ से बहुत ऊपर है। आचार्य वल्लभ अविकृत परिणामवादी हैं। रामानुज ने जगत के परिणामन में उपाधि लगाकर उसे विकृत कर दिया है। वे जगत की उत्पत्ति और विनाश मानते हैं, परंतु वल्लभ के मत में जगत का ब्रह्म से केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है, जगत नष्ट नहीं होता। जैसे कुंडल पिघलकर पुनः स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही जगत तिरोहित होकर ब्रह्म रूप धारण कर लेता है। पुष्टि संप्रदाय में भगवान के अनुग्रह से भक्त भगवान के आनंद धाम में प्रवेश करता है। पुष्टि भक्ति को उष्ण भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान के अदरामृत पान को उपासना का सर्वोच्च फल माना जाता है। पुष्टि मार्ग के ये सिद्धांत विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से ही लिए गए होंगे। वैष्णव भक्ति का विकास। महाभारत के नारायणी उपाख्यान का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि नारायण एक ऋषि थे और स्वयंभुव मन्वंतर के सतयुग में उत्पन्न हुई भगवान की चार अवतारमयी विभूतियों में से एक थे। तीन अन्य विभूतियां नर, हरि और कृष्ण थीं। हरि और कृष्ण के संबंध में महाभारत मौन है, पर नर और नारायण के व्यक्तित्व पर उसने पर्याप्त प्रकाश डाला है। महाभारत के अनुसार नर और नारायण बद्रिकाश्रम में तप करते थे। जब नारद ने उनके पास जाकर पूछा, समस्त संसार को आपकी पूजा करता है, फिर ऐसा कौन सा देव है जिसकी आप पूजा करते हैं? नारायण ने इसके उत्तर में नारद से कहा था, जो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा, त्रिगुणातीत और त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जनक है, वह सत असत रूप परमात्मा हम दोनों नर और नारायण की उत्पत्ति का कारण है। हम दोनों उसी की पूजा करते हैं। नारायण ऋषि की पूजा का क्या प्रकार था? महाभारत ने इसी स्थल पर आगे इसे ज्ञान योग का नाम दिया है। यह ज्ञान योग निश्चित रूप से ध्यान धारणा आदि से संबंध रखता है। प्रभु का सदैव स्मरण करना, सर्वात्मना उसकी शरण ग्रहण करना, निरंतर उसी के ध्यान में लीन रहना, इस प्रकार की पूजा के प्रमुख अंग हैं। महाभारत यहाँ परमात्मा को सर्वगुण संपन्न तथा साथ ही निर्गुण भी लिखता है। नारायण ऋषि की पूजा विधि के अंतर्गत महाभारत ने यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं किया है। नारायण ऋषि के पश्चात महाभारत चित्र शिखंडी नाम के सात ऋषियों की तपस्या का उल्लेख करता है, जिन्होंने पंचरात्र शास्त्र का निर्माण किया था। इन ऋषियों ने 1000 दिव्य वर्षों तक तप करके भगवान नारायण की आराधना की थी। यहाँ भगवान का भी नाम नारायण आ गया है और आराधना के अंतर्गत यज्ञ को कोई स्थान नहीं दिया गया है। श्री समुद्र के उत्तर में स्थित श्वेत द्वीप के निवासी भी सूर्य की ओर मुख किए मानस जप जपते तथा अनवरत प्रभु ध्यान में मग्न दिखाई गए हैं। वैष्णव भक्ति का यह प्रथम युग प्रभु के प्रति ज्ञान ध्यान परायणता का युग है, जिसे निवृत्ति प्रधान युग भी कहा जा सकता है। राजा वसु परिचर के साथ वैष्णव भक्ति का दूसरा युग प्रारंभ होता है, जिसमें अहिंसक यज्ञों की प्रधानता है और आरण्यक विधि से देवों को भाग अर्पित किए जाने का वर्णन है। यह युग प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों को अपनाए हुए है। बृहस्पति ने राजा उपरिचर को जो शास्त्र पढ़ाया उसमें इन दोनों दशाओं की मान्यता थी। राजा उपरिचर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, जो प्रवृत्ति मूलक है और अपनी तपश्चर्या द्वारा भगवान के दर्शन करता है, जो निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति परायणता में मानस जप के साथ इंद्रिय शून्यता, निराहारिता तथा अविचल एवं अनन्य भक्ति की स्थिति आती है। वैष्णव भक्ति के ये दो युग भागवतों के दो सांप्रदायिक भेदों पांच रात्रों तथा व्याख्यानसों के लिए एक समान है। तीसरे युग में दोनों संप्रदायों का पद पृथक पृथक हो जाता है। व्याख्यानस वैदिक पद्धति से चिपटे रहते हैं, पर पांचरात्र उससे भिन्न पद का अनुसरण करते हैं। राजा उपरिचर के पश्चात महाभारत के साक्ष्य से ही चित्र शिखंडियों द्वारा प्रोक्त भक्ति तंत्र लुप्त हो गया। गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में भी ऐसा ही लिखा है, इस लुप्त हुए भक्ति युग का द्वापर के अंत में श्री कृष्ण ने उद्धार किया। उन्हीं के साथ वैष्णव भक्ति के तीसरे युग का आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने इस युग में स्वयंभुव युग के भगवत भक्त तपस्वी नारायण ऋषि में उस परम ज्योतिर्मय की ज्योति का, उसकी श्री और विभूति का दर्शन किया और उन्हें परम पुरुष के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अवतारवाद की श्रृंखला यहीं से प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण योगी थे, योग बल से उन्होंने अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। गीता के चतुर्थ अध्याय के पांचवें श्लोक में उन्होंने इस सत्य का स्पष्ट उल्लेख किया है। श्री कृष्ण ही स्वयंभू युग के नारायण ऋषि हैं और अर्जुन नारायण के साथ ही नर ऋषि हैं। इस बात का उल्लेख महाभारत आदि पर्व अध्याय 220 के श्लोक 5 में हुआ है। श्री कृष्ण महात्मा थे, वेद वेदांग वेत्ता थे और योगाचार्य थे। उनके लोकोत्तर व्यक्तित्व का भीष्म पितामह जैसे अखंड ब्रह्मचारी तथा व्यास जैसे तपोधन महर्षि पर भी अनिवार्य प्रभाव पड़ा और वे अपने समय में ही आराध्य देव के पद पर पहुंच गए। गीता में उनके विचारों का सार दिया हुआ है। गीता ज्ञान योग की मुक्त कंठ से प्रशंसा करती है। निष्काम कर्म योग उसकी सर्व प्रमुख विशेषता है, पर भक्ति योग उसका प्राण है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, गीता की भक्ति भावना का केंद्र बिंदु है। वैष्णव भक्ति के तृतीय युग में अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई। जिस नारायण ऋषि के अवतार श्री कृष्ण माने गए, उस नारायण ऋषि को भी भगवान का अवतार स्वीकार किया गया और इस प्रकार अवतार श्रृंखला को परमेश्वर के साथ संयुक्त कर दिया गया। जिस यज्ञ की वैष्णव भक्ति के द्वितीय युग में इतनी प्रतिष्ठा थी और जिसमें औषधि की हवी दी जाए या छाग की, इस विषय में उपरिचर राजा के समय तक संदेह बना रहा, उस यज्ञ रूप की तृतीय युग में परिवर्तित कर दिया गया। द्रव्यमय यज्ञ के स्थान पर भावमय यज्ञ की प्रतिष्ठा हुई। जनता को बहिर्मुख बनाने की अपेक्षा अंतर्मुख बनने का अवकाश मिला। गीता में प्रतिपादित भक्ति कर्म त्याग का नहीं कर्म परायणता का निर्देश करती है। उसने संन्यास मार्ग को भी निःश्रेयस्कर कहा है, पर कर्म योग को कर्म संन्यास से बढ़कर माना है। इस संबंध में विशेष विवरण के लिए भारतीय साधना और सूर साहित्य के पृष्ठ 29-31 द्रष्टव्य हैं। महाभारत के भीष्म पर्व का प्रारंभिक भाग गीता है। महाभारत के नारायणी उपाख्यान में राजा वसु परिचर के अश्वमेध यज्ञ का पौरोहित्य करने वाले बृहस्पति, स्वर्ग काम परायण पशु बलि समर्थक और द्रव्यमय यज्ञ के अनुमोदक ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। ब्राह्मणों का यह वर्ग भागवतों के साथ बहुत दिनों तक सामंजस्य नहीं कर सका। ब्राह्मणों का एक दूसरा वर्ग था जिसका प्रतिनिधित्व उपाख्यान में आए वे ऋषि करते हैं, जिन्होंने वसु परिचर को हिंसामय यज्ञ का समर्थन करने पर श्राप दिया था। महाभारत शांति पर्व अध्याय 337 श्लोक 15-16, इसी श्लोक के आगे श्लोक संख्या 34 में इन ऋषियों को ब्राह्मण कहा गया है। यह दल भागवतों के साथ मिलकर कार्य करने लगा। पशु हिंसापूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान के विरोध में भागवतों के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध संप्रदाय भी प्रचार कर रहे थे। लोकायत संप्रदाय भी इनका साथ दे रहा था, पर भागवतों से इन सभी संप्रदायों में एक भिन्नता थी। ये संप्रदाय खुलकर वेद पर आक्रमण करते थे, परंतु भागवत धर्म वेद सांख्य योग आदि सभी ब्राह्मण पद्धतियों का अनुगामी था। वेद का खुलकर विरोध उसने कभी नहीं किया। हाँ, हिंसापूर्ण सकाम यज्ञों को लेकर उसने वैदिक धर्म के साथ कभी समझौता नहीं किया, और इसी प्रश्न को लेकर दबी जबान में वह कभी कभी वेदवादियों की निंदा भी अवश्य करता रहा है। जब भागवतों को ब्राह्मणों में ही एक दल ऐसा मिल गया जो सकाम यज्ञों के विषय में उनके साथ एक मत था, साथ ही वेद में जिसकी अटूट श्रद्धा थी, तो भागवत और वैदिक धर्म दोनों मिलकर एक हो गए। ब्राह्मणों ने भागवत धर्म के अभिनव प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण को दिव्य विभूति के रूप में ईश्वर का अवतार स्वीकार कर लिया। उनके परिवार वालों को उनके साथ संयुक्त करके चतुर्व्यूह के अंदर स्थान दिया। भागवतों की मान्यताओं के अनुकूल अनेक महापुरुषों को उन्होंने अवतार का पद प्रदान किया, और जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, मत्स्य कूर्म आदि में भी अवतार की भावना करके जनता के मनोरंजन तथा उपदेश के लिए उन्होंने पर्याप्त सामग्री एकत्र कर दी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को भी अवतार की श्रृंखला में बांधकर उन्होंने अपना लिया। गीता में चतुर्व्यूह की प्रतिष्ठा दृष्टिगोचर नहीं होती, पर वह महाभारत की नारायणी उपाख्यान में विद्यमान है। गीता श्री कृष्ण के कुछ समय पश्चात बनी होगी, पर महाभारत का यह उपाख्यान निश्चित रूप से बहुत बाद में बना है। चतुर्व्यूह का सिद्धांत भागवत संप्रदाय की वैखानस शाखा को भी मान्य नहीं है। इसका प्रचार पांचरात्र संहिताओं ने ही विशेष रूप से किया है। चतुर्व्यूह के अंतर्गत वासुदेव श्री कृष्ण और संकर्षण दो की प्रधानता है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व पतंजलि के समय में दोनों के लिए मंदिर बनाए जाते थे, ऐसा महाभाष्य के साक्ष्य से प्रकट होता है। पाणिनि के समय में भी दोनों की आराध्य देवता के रूप में प्रतिष्ठा थी। महाभारत में भीष्म श्री कृष्ण की ईश्वर रूप में स्तुति करते ही हैं। अतः श्री कृष्ण की मान्यता उनके जीवन काल में तो थी ही, उसके पश्चात उत्तर उत्तर बढ़ती ही गई, और ब्राह्मण भागवत सम्मेलन के होते ही वह अपने पूर्ण रूप में चमक उठी। इसे हम वैष्णव भक्ति का चतुर्थ युग कह सकते हैं। पांचरात्र संहिताएं इसी युग की देन है। भक्ति के इस युग के साथ मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है। यज्ञों के विपुल विधि विधानों के स्थान पर इस युग में मंदिरों का निर्माण हुआ, और विविध प्रकार के श्रृंगार सज्जा से विभूषित देव प्रतिमाएं बनाई गईं। आंतरिक ध्यान और उपासना के स्थान पर बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाली पूजा पद्धति की प्रतिष्ठा भी इसी युग में हुई। इस पूजा पद्धति में कतिपय द्रव्य आवश्यक समझे गए हैं। पूजा द्रव्य में कलश, शंख, घंटी और दीप तथा जल तथा पूजा विधि में आवाहन, आसन, अर्ध्य, पाद्य, आचमन, स्नान, पुष्प, धूप, तांबूल, आरती, परिक्रमा आदि षोडशोपचार की गणना होती है। इनमें से कुछ वस्तुएं वायुमंडल शोधन के लिए प्रयुक्त होती हैं और कुछ मन को एकाग्र करने के लिए। मूर्ति पूजा जैन धर्म में तो पहले से ही चली आती थी। इधर अनेश्वरवादी बौद्धों ने भी भागवत भक्ति से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाना प्रारंभ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के इंडिया तथा ग्रीस शीर्षक अध्याय में पृष्ठ 152 पर लिखा है कि प्रारंभ में बुद्ध की मूर्ति न बनाकर बौद्धों ने यूनान के एक देवता अपोलो के ढंग की बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई, पर बाद में स्वयं बुद्ध की भी मूर्तियां बनने लगी। नेहरू जी ने पर्शियन बुद्ध शब्द को भी इस स्थल पर बुद्ध शब्द का अपभ्रंश लिखा है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति पूजा पूर्व से पश्चिम को गई। इतिहास ईसा के पूर्व शतकों में यूनान और अरब को मूर्ति पूजा के केंद्र बताता है। संभव है ऐसा ही हो, पर हमारी समझ में यह विशेष रूप से भागवतों का ही प्रभाव था जिसने महायान संप्रदाय वालों को मंजूश्री अवलोकितेश्वर मैत्रेय प्रज्ञा पारमिता तारा आदि की मूर्तियां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। मूर्ति पूजा के क्षेत्र में यदि बौद्ध धर्म भागवत धर्म का ऋणी है तो भागवत भक्ति के क्षेत्र में वर्ण धर्म को शिथिल कर देने का श्रेय बौद्ध धर्म को प्राप्त है। श्रीमद् भागवत की निवृत्ति परायणता भी बौद्ध धर्म की ही देन है। यह तो अहिंसक ब्राह्मण वर्ग और भागवतों के सम्मेलन की बात हुई, सकाम हिंसामय यज्ञों के समर्थक ब्राह्मण दल का भविष्य क्या हुआ? हमारी सम्मति में वह शैव एवं शाक्त संप्रदायों में परिणत हो गया और भागवतों का सामना करने के लिए उसने अपने इष्ट देव शिव एवं शक्ति को भागवत एवं देवी विशेषणों से भी संबोधित किया। ईसा से कुछ पूर्व समय की त्रिशूलधारी भगवान शिव की मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। यज्ञ से मूर्ति पूजा तक शीर्षक प्रकरण में हम यज्ञ और शिव के संबंध में कुछ संकेत इसके पूर्व ही दे चुके हैं। शिवलिंग की पूजा हमारी सम्मति में त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा से बहुत पूर्व की है और भागवत प्रभाव से एकदम असंपृक्त है, परंतु त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा निश्चित रूप से भागवत प्रभाव के उपरांत बनी है। शैवों के साथ शाक्त संप्रदाय वाले हिंसामय यज्ञों का समर्थन बहुत बात तक करते रहे हैं और उनके द्वारा काली माई पर पशु बलि चढ़ाने की प्रथा का पालन आज तक होता है। शैव और शाक्त दोनों संप्रदाय हमारी समझ में ब्राह्मणों के उसी दल के अवशेष हैं जो हिंसामय यज्ञों के अनुष्ठान में विश्वास करता था। वैष्णव भक्ति के चतुर्थ युग की विशेषताएं हमें दक्षिण के आलवारों तथा कतिपय आचार्यों में परिलक्षित होती हैं जिनके विषय में विगत प्रकरणों में लिखा जा चुका है। इन आलवारों तथा आचार्यों का युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। इसी युग में उत्तराखंड में भागवत धर्म को राज धर्म के रूप में स्वीकार करने वाला गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ जिसकी पताका पर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। दक्षिण में वैष्णव धर्म को कुल शेख कर के अतिरिक्त अन्य राजाओं का आश्रय कम प्राप्त हुआ पर जनता के हृदय पर उसकी बड़ी गहरी छाप पड़ी। फिर भी राजाश्रय प्राप्त कर लेने का महत्व कम मूल्यवान नहीं होता। दक्षिण के वैष्णव आचार्य जो उत्तर भारत में आकर गंगा और यमुना की घाटियों को अपने प्रचार का क्षेत्र बनाते रहे, उसका एक कारण यह भी था कि दक्षिणी प्रदेशों के राजा प्रायः शैव थे और वैष्णव धर्म में उतनी रुचि नहीं रखते थे। उत्तर के गुप्त वंशीय सम्राटों ने ब्राह्मण धर्म की छाप लगे हुए वैष्णव धर्म के प्रचार में अनुपम योग दिया। भागवत संप्रदाय से संबंध रखने वाली 108 पांचरात्र संहिताओं का निर्माण इसी युग में हुआ जिनमें से कुछ के उद्धरण आचार्य रामानुज ने अपने श्री भाष्य में दिए हैं। प्राचीन पुराणों के नवीन संस्करण तथा कतिपय नवीन पुराणों का निर्माण भी इसी युग की देन है। पौराणिकों ने निर्गुण ब्रह्म को लोकग्राह्य बनाने के लिए उसे सगुण रूप में उपस्थित किया। अनेक मानसी भावनाओं को साकार रूप प्रदान किया गया जिससे वे अपठित व्यक्तियों के लिए स्थूल तथा वास्तविक से ज्ञात हों। परात्पर सत्ता को भी उसके विविध गुणों के आधार पर नाना देवी देवताओं के रूप में प्रकट किया गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश के तीन रूपों में प्रभु की सृजन पालन तथा संहार की शक्तियों को मूर्त रूप प्राप्त हुआ। यही नहीं, भगवान के नाम रूप लीला तथा धाम का विस्तृत एवं काल्पनिक रूप खड़ा किया गया जो साधारण जनता के हृदय आकर्षण के लिए उपयुक्त सामग्री रखता था। वैष्णव भक्ति के चतुर्थ युग के पश्चात जो पंचम युग आया उसमें भगवान की लीलाओं को विशेष रूप से स्थान मिला। श्री कृष्ण की जिन लीलाओं का गान इस पंचम युग में हुआ है उसे चतुर्थ युग वाले आचार्यों ने अपनी कृतियों में या तो स्थान ही नहीं दिया और यदि दिया भी है तो बहुत कम। भागवत में ये लीलाएं विद्यमान है परंतु उस वृहत आकर्षक तथा चमत्कार युक्त रूप में नहीं जिसे पंचम युग के कवियों तथा आचार्यों की विशेषता कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल इसी पंचम युग के साथ प्रारंभ होता है, अतः आगे के प्रकरणों में इसी भक्ति काल के उद्घाटन द्वारा वैष्णव भक्ति के पंचम युग की विशेषताओं का मुख्य रूप से वर्णन किया जाएगा।